السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ہم سے بھی زیادہ کوئی نعمتوں میں ہوگا؟ اس شعور کے ساتھ بولیے الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز اپنی اس کتاب کے لیے بٹھاتے ہیں اور ہم واقعی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. نعمتوں میں ڈوبنے کے ساتھ نعمتوں کا احساس بہت بڑا احساس ہوتا ہے. خاص طور پہ آج 14th پارے کو پڑھنے کے دوران آپ اس نعمت کو محسوس کیجئے گا، اور وہ ہے نعمت قرآن. الحمد للہ بنعمت الاسلام، الحمد للہ بنعمت القرآن، الحمد للہ بنعمت الہدایہ. بہت خوش ہونے کے مواقع ہیں ہم سب کے پاس. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے والوں میں ڈال دے اور محروم لوگوں میں نہ کر دے. دعا کیجئے کہ اللہ مجھے محروم میں نہ کرنا، محروم جو لوگ ہو گئے، جو دنیا میں آ کر اپنی زندگیوں کو ضائع کر کے چلے گئے، اے میرے مالک مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا. آئیے شروع کرتے ہیں شعور کے ساتھ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دورہ قرآن 2021. آج ہم اس میں سے پارہ نمبر 14 جس کا نام ہے ربما یود الذین کفروا، اس کو شروع کریں گے. حسرتوں کے ساتھ کسی کا کال ہے، جو بھی انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ آپ خود بھی دیکھیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ پارہ حقیقت میں ہمیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت، جو اس نے ہمیں ایک بون مسلم کے نام پر اسلام کا ایک بہترین فرد ہونے کے ناطے دی ہے، اور اس کو ہم محسوس ہی نہیں کر پاتے کیونکہ ہم نے شاید کچھ حصہ اسلام سے دور اگر دیکھا ہوتا تو ہم اس کی قدر جانتے. تو آج کا ہمارا یہ پارہ ہدایت کی طلب رکھنے والے شخص کے لیے ایک شکر کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں اسلام دیا. تو میں یہاں ہدایت کے طالبین اور طالبات کو مبارک دوں گی کہ آپ اگر اسلام کی دولت سے ہی کم از کم مالا مال ہے، آپ کا نام ایک مسلمان نام ہے، آپ کی ماں، آپ کے باپ، تو آپ اس پہ بھی شکر کیجئے. کیا ہوا اگر آپ ماحول کے کسی برے اثر میں آنے کی وجہ سے، یا آپ کو شروع سے وہ دین یا قرآن اسرہ نہیں ملا جو اب مل رہا ہے، تو آپ اگر کچھ غلطیوں میں چلے بھی گئے تھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، کیونکہ ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ چونکہ مسلمان نہیں تھے تو اس پہ انہوں نے بھی یہی سوچ لیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں. تو پھر آپ میں سے ہر ایک جو کم از کم مسلمان تو ہے نا، وہ کہے الحمدللہ بنعمت الاسلام. پھر ہو سکتا ہے میری یہ بات کسی ایسے کان پہ پڑ جائے کہ جس کے ماں باپ مسلمان چونکہ نہیں تھے اور ان کو شروع سے اسلام کی یہ روشنی نہیں دکھی. اور فطری سی بات ہے کہ انسان جس مذہب میں پلتا بڑھتا ہے اس کو وہی اچھا لگتا ہے، تو وہ پھر اس پہ شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے میری کتاب سے، میرے مستقبل سے وہ کتاب جو فی ہی ذکر حکم کی بات کرتی ہے تو نے جوڑا، اور میں اس کو صرف ایک اچھی کتاب سمجھتے ہوئے بھی سن رہی ہوں، تو اللہ تو نے مجھے جو شعور دیا میں اس پہ تیرا شکر ادا کرتی ہوں. کیونکہ جتنے باشعور ہو کر آپ اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں نا، اتنا آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی زندگیوں میں یہ خوشیوں کے خزانے بھرنے والی کتاب ہے. اور جب آپ اس کتاب کو تھامتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب حقیقت میں ہدایت کی کنجی ہے، اور یہی چابی لگے گی تو جنت کا دروازہ کھلے گا. تو اسلام کے بغیر جنت، ہیل، پیراڈائز، سورگ اور اسی طرح کے خوبصورت نام جو ہر زبان میں لیے جاتے ہیں، اس میں داخلہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے اس کی قدر کی توفیق دے. چلتے ہیں آج کے پارے کی مین تھیم آیتوں پہ. یقین کیجئے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے اتنا ٹائم لگے کہ میں کون سی لوں اور کون سی نہ لوں. کل سے لے کے رات تک میرا دل دماغ اس طرح کی گتھیوں میں الجھا ہوا تھا کہ چار آیتیں میں نے اکٹھی دماغ میں ڈال کے سوچی ہیں، اچھا یہ کر لوں، پھر نہیں یہ اچھی، پھر یہ کر لوں. کیونکہ یہ پارہ انریچڈ ہے خوبصورت آیتوں کے ساتھ، خوبصورت باتوں کے ساتھ. تو جو بالآخر آپ کے نصیب میں آیتیں تھیں وہ ہے جی سورت نحل کی آیت نمبر 97 اور 98. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. جو شخص نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت, یعنی دیر از نو جینڈر ڈسکریمینیشن ان اسلام, خاص طور پہ نیکیوں میں جنت پانے میں. جنت میں عورتیں اسی حق کے ساتھ جائیں گی جس حق سے مرد جائیں گے. یہ نہیں کہا گیا کہ عورتوں کو تو بس جنت کے کسی اعلیٰ ایک چھوٹے سے حصے میں ڈال دو, نہیں. یعنی عمل صالح میں, ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ایک مرد جتنا محنت کرے گا, جتنی محنت ایک مرد کرے گا وہ وہاں پہنچ جائے گا. تو درجے رکھے ہی اللہ جنتوں کے ساتھ ہیں. کر لے گی تو عورت اوپر کی جنت میں چلی جائے گی. گویا کہ ادھر میدان کھلا ہے تو اکویلٹی اور ویمن لیپ والوں کو یہ آیت دکھا دیجئے کہ من ذکرن او انسا شرط ایک ہی ہے, وہ ہوا مومن. کیونکہ ایمان وہ رجسٹریشن ہے جس کے بعد نیکیاں ایکسپٹ کی جاتی ہیں. آپ کسی اسکول, کالج, یونیورسٹی میں جب ایڈمیشن لیتے ہیں اسی کے بعد پھر وہ آپ کا ریکارڈ بھی کیپ کرتے ہیں, آپ کا ڈیٹا بھی کیپ کرتے ہیں, اور آپ کو اس طریقے سے وہ خوبصورت چیزیں دکھاتے ہیں. تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو پڑھتے وقت شکر کیجیے اللہ کا. آپ ایک عورت ہیں الحمدللہ, آپ ایک مرد ہیں الحمدللہ. کرنے کا کام کیا ہے؟ آمنو کے بعد عمل الصالحات, یہ دو باتیں ہیں. ملے گا کیا؟ فلنحیینہ حیاتن طیبہ, ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے, پاکیزہ زندگی دیں گے. اور اس کے ساتھ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے. یہ بہتر بدلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال جو اکثر دیتی ہوں, یہاں آپ کے شروع میں آ گئی ہے تو لے لیجئے, کہ ہم نمازیں تو روز ہی پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے, لیکن کبھی کی کوئی ایک نماز ایسی ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ واقعی یہ قبول ہو گئی, بہترین خشوع اور خضوع علی. چاہے وہ نماز کسی دکھ کی کیفیت میں تھی یا اضطراب میں تھی, لیکن وہ بہترین نماز تھی. باقی کچھ ایوریج درجے کی نمازیں تھیں, کوئی کچھ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری ساری زندگی کی نمازوں کو اس بہترین نماز کے لیول پہ جا کر سیٹ کر دے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کا پرسنٹیج نکال کر اس کو دی بیسٹ پہ رکھ دیا جائے, تو دی بہترین عمل ہر چیز میں اللہ تعالیٰ احسانی ما کانو عمل, یعنی اس سے اچھا جو انہوں نے کیا, یہ ہے کتب علی نفسہ الرحمہ, یہ ہے آپ کے رب کی رحمت جو آپ کے اوپر وہ آج بھی کر رہا ہے اور وہ آگے جا کر بھی آپ کے اوپر یہ چیزیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ہماری ایوریج اور بیکار قسم کی نیکیوں کو پکڑ کر اس کو بنیاد بنائے گا, بلکہ بہترین طریقے سے اللہ پیش کر کر قبول کریں گے. پر کرو کیا؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لو, کیونکہ شیطان کو قرآن پڑھنا ہی مشکل لگتا ہے, برا لگتا ہے. تو جو ہی آپ نے قرآن کی بات کی, اللہ نے کہا تمہاری حیات طیبہ ہوگی. تمہارا آج کا مین تھیم کیا ہے؟ فی اثر المادیتی فلنحیینہ حیات طیبہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے مادہ پرستی کے دور میں حیات طیبہ. آج چاروں طرف نفسہ نفسی کا شکار ہیں لوگ, اور خوب سے خوب ترقی تلاش ہے. لگژریس زندگی ایک گول بن گیا اور نہ حاصل ہونے والا گول. ایک فٹ بال گراؤنڈ میں تو ایک گیند کے پیچھے شاید 8-10 لوگ پھرتے ہیں نا, اور اسی طرح کرکٹ کے میچ میں بھی کچھ 10-11 کھلاڑی ایک ٹیم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا. لیکن دیکھا جائے تو اگر اس مادہ پرستی کے دور میں ہر بندہ جس گول کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہے وہ کیا ہے؟ خوشی اور لگژری اور کمفرٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ادھر بتا دیا ایک نسخہ, ایک طریقہ, اور وہ کیا ہے کہ فَلَنُخْشِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, جو بندہ بھی اس کتاب کو تھام لے گا میں اس کو حقیقت میں پاکیزہ زندگی دوں گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا ہے. آپ دیکھیے کہ دین کی رہنمائی کے بارے میں دنیا میں دو طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ایک کیا ہے کہ اہل دنیا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان زندگی ان ہدایات کے مطابق گزارے, جیسے اللہ نے کہا, جیسے اس کے رسول نے کہا, تو پھر انسان کامیاب نہیں رہ سکتا دنیا میں, یا پھر وہ خوش نہیں رہ سکتا. لکھیے دو چیزیں. یعنی ہم دین دارانہ زندگی گزارنے کو آخرت کی کامیابی تو سمجھتے ہیں, लेकिन दुनिया की कामयाबी नहीं समझते। क्या मुश्किल है, हम कैसे फिर खुश रहेंगे। कदम कदम पे शरई और अखलाकी रुकावटें मेरे कदम रोक लेंगी और जहां मुझे दौलत कमाने का मौका मिलेगा वहां तो शरीयत आके सामने खड़ी हो जाएगी और हलाल और हराम, जायज और नाजायज की जंजीरें लेकर खड़ी हो जाती है। चलो जी, मैं तो नहीं चलता, मैं नहीं ये कुरान पढ़ती और पढ़ता, क्योंकि मुझे इसके बाद खुश नहीं रहना होगा और मेरी जिंदगी बहुत पाबंद हो जाएगी। है ये कॉन्सेप्ट के नहीं? हकीकत में बहुत सारे लोग इस कुरान को अपने रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट समझते हैं खुश रहने और कामयाब होने के नाम पे, और दुनिया में बेहतर जिंदगी के लिए दुनिया तलबी को फिर मकसद हयात बना लेते हैं। और फिर वो क्या समझते हैं कि अब गिल्ट के साथ हो जो मर्जी, अब हमें दुनिया में तो रहना है। लेकिन अब देखिए कि अल्लाह ताला के नबियों की हिदायत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंसान चाहता है कि मुझे जिंदगी में खुशियां नसीब हों, मुझे खुलकर खेलकर खिलने का मौका मिले, मेरी ख्वाहिशात के पूरे होने के सारे मौके पैदा हों। लेकिन ऐसे कितने मौके हैं जिस पर शरीयत कुछ पाबंदी लगाती है? तो लिहाजा सतहियत पसंद यानी बड़े एवरेज माइंड लोग ये सोच लेते हैं कि अगर जिंदगी में ऐश करनी है तो दीन पर चलने से इनकार कर दो, और अगर दीन और अखलाक के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है तो अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट दो। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, है ना गलतफहमी? आज कितने लोग यही सोच के किताब नहीं पढ़ते, सोचते भी नहीं, समझते भी नहीं, वो कहते छोड़ दो और दीन और दुनिया साथ रखो का एक अजीबोगरीब स्लोगन लोगों ने अपनी जिंदगी में डाल दिया, जिसका नुकसान क्या हुआ कि हमने दीन और दुनिया साथ रखने का दूसरा नाम, जो मैं अपनी नजरों में कहती हूँ, गुनाह और सवाब साथ रखो, अल्लाह की फरमाबरदारी और नाफरमानी साथ रखो, हराम और हलाल साथ रखो, क्योंकि हमारा तो सारा दीन दुनिया सिखाता है। आज तक 14 पारों से पहले आपने जो पढ़ा सुना, आपको दुनिया की रहनुमाई मिली, गाइडलाइन मिली, बिल्कुल मिलती है। तो जरूरत है इस बात की कि आज इस कॉन्सेप्ट को समझे, और आज ये पारा एनरिच्ड है इस बात से। एक तो ये फेमिनन सोच वाला पारा है, अभी आप देखेंगे कि पूरे पारे में आपको जो नुक्ते मिलेंगे, अभी यही आयत आपके सामने है तो इसमें ज़करेन और उनसा का तज़किरा आ गया। आमतौर पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू में औरत और मर्द दोनों ही रख दिए जाते हैं साथ ही साथ, लेकिन यहां आपको औरत की बात देखिए, और आप पूरे पारे में आज काउंट करके जाइएगा, खास तौर पर सूरत नहल, शहद की मक्खी जो लोगों को शहद देती है वो भी एक फीमेल थी और है, पूरे मोनस के सीगे हैं। तो शहद भी फीमेल ने दिया तो कुरान भी औरत ही औरतों को देगी, क्योंकि औरतों के कुरान पढ़े बगैर फलनुशियन्नहु हयातन तय्यिबा नहीं आती। तो अल्लाह ताला आज इस कॉन्सेप्ट की बेहतरी के लिए हमें ये आयत देते हैं, और याद रखिए ये दीन इस्लाम का एक इतना बड़ा पहलू है कि आपको आज सिर्फ चखने के लिए चंद बाइट्स देने लगी हूं। आइए देखते हैं कि हयातन तय्यिबा से क्या मुराद है। लेकिन ये एक पूरी इस मौजू की एक किताब है, अगर आप चाहेंगे तो आपके इस दौरे कुरान के बाद एक और शॉर्ट कोर्स करवा देते हैं, अल हयात तय्यिब फिल कुरानिल करीम, एक खूबसूरत किताब है अरबी की, अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे मैं आपको पढ़ाने को तैयार हूं, और इसमें फिर आप देखेंगे असबाब क्या हैं, चीजें क्या हैं, यानी ऐसे लगता है कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नटशेल में बंद कर दिया गया इस किताब की रोशनी में। तो हम जितना ज्यादा इसको पढ़ेंगे इसको आपको अपनी जिंदगी में समझ आएगा। लेकिन यहां हयातन तय्यिबा क्या है कि जब बंदा अमल सालेह करता है तो उसकी जिंदगी में नेक अमाल की तौफीक उसको मिलती है। आप देखिए कि हर बंदा ही कुछ ना कुछ तो अच्छा काम करना ही चाहता है ना, लेकिन अल्लाह सुबहान ताला कैसे बताता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी नेकियों से भर जाती है। फिर दुनिया में हलाल रिस्क पर इंसान किनात करने लगता है, दुनिया में रिस्क हलाल भी पाता है, और फिर किनात की दौलत, और फिर इबादत में लज्जत, और खास तौर पे फिर आप देखते हैं कि आखिरत में पाकीजा जिंदगी गुजारने वाले को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन हकीकत यह है कि इस आयत के अगर मैं पीछे वाली आयत भी ऐड करती जो ज्यादा हो जाता तो वहां सब्र की बात थी, 96 आयत, अभी इंशाल्लाह हम तरतीब में पढ़ेंगे तो आप देख लीजिएगा। तो मुझे ऐसे समझ आता है कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं। जरा सा अपने आपको रिलैक्स कीजिए, कोई इल्मी बातें नहीं है इस वक्त, यह आपकी मेरी बात है। खुशियों में सब्र आ जाए तो खुशियां तय्यब हो जाती हैं, गमों में सब्र आ जाए तो गम तय्यब हो जाते हैं, मुश्किलात में गम मुश्किलात में सबर आ जाए तो मुश्किलात तैयब हो जाती हैं। माली परेशानियों के वक्त में अगर सबर आ जाए तो वो माली परेशानियां तैयब हो जाती हैं। एक मोमिन, हो सकता है उसकी जिंदगी में जहनी परेशानी आए, लेकिन वो कभी जादू टोने और खुदकुशी की तरफ नहीं जाएगा। एक इंसान की जिंदगी में माली परेशानी आ सकती है, लेकिन वो कभी सूद, रिश्वत, हराम होरी की तरफ नहीं जाएगा। और एक मोमिन की जिंदगी में खुशियां आएंगी, लेकिन वो उन खुशियों में कोई नाफरमानी का काम नहीं करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, तो वो खुशियां तैयब हो जाएंगी। और याद रखिएगा, कुरान के इल्म के बगैर हयात हयात तैयब नहीं बनती, हयातन तैयबन मुमकिन ही नहीं। और इस बात को आप में से वो बहुत सारी बहनें जानती हैं जो कुछ हिस्सा इस कुरान के शऊर के बगैर गुजार चुकी हैं। क्योंकि आप देखिए कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं कि जो उलमा के घरों में ही पैदा हुए हों। और खास तौर पे यहां मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग, यानी मैं अपने ऑडियंस को और अपने साथी जो माशाल्लाह स्टूडेंट्स कुरान के बन के आते हैं उनको जानती हूं, अक्सर जिंदगी के आधे हिस्से को गुजारने के बाद कुरान को टच करते हैं, 20s 30s के बाद। और अगर 20s में भी आपको मिल जाए तो भी आप बड़े खुशकिस्मत हैं, लेकिन हम में से किसी को 6-7 साल की उम्र में इसका इल्म नहीं मिला, नाजरा मिला, अलिफ बाता मिला, हमारी रस्में बिस्मिल्ला हुई होगी, हमारी आमीन भी हुई होगी, लेकिन ये जो कुरान का इल्म है ना, ये नहीं मिला। चंद सिस्टर्स की शेयरिंग आपको पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आप इससे फायदा उठाएं। आज इंशाल्लाह आपको शेयरिंग्स कुछ भेजेंगे भी ऑडियो में। ये लिखती हैं कि उस्ताजा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत साल भटकती रही, कोई रास्ता तलाश कर रही थी। अल्लाह ताला ने मुझे कुरान में मुझे क्या दिया, मुझे जिंदगी दी, मुझे जीने की समझ आई, अपना दुनिया में आने का मकसद समझ लिया। अगर कुरान मेरी जिंदगी में ना होता तो मैं आज बहुत बुरी जिंदगी गुजार रही होती, अपने दुखों को दूर करने के लिए बुराइयों का सहारा लेती। लेकिन कुरान ने सब्र सिखाया, दुख में भी दिल दुखी नहीं होता, रिश्तों की अहमियत समझ आई और कुरान मेरी जिंदगी की बहार बन गया। दीन पर मोहब्बत आती है, अल्लाह के हुक्म मानने आसान हो गए, कुरान ने जिंदगी आसान कर दी और रब का शुक्र जिसने मौत से पहले मुझे अपना तारुफ करा दिया। और इस बात का भी शुक्र कि इसने मुझे एक बेहतरीन उस्ताद दिया, मैं अपनी कोई खूबी नहीं समझती, ये अल्लाह का फजल और उसका रहम है, और उस्तादों का भी शुक्रिया। ऐसी बीसियों नहीं मैं कहूंगी, सैकड़ों नहीं कहूंगी, हजारों शेयरिंग्स हमारे मेल बॉक्स में पड़ी हुई है। आप में जिसको शौक है, इंशाल्लाह जब वेबसाइट अपनी असल शक्ल पे सामने आएगी, एक पूरा मुझे लगता है कि खजाना है इस वक्त जो फीडबैक्स की सूरत में हमें स्टूडेंट्स का मिलता है, कि जिसको आप और मैं अगर अपनी जिंदगी में लेकर देखें तो हमें समझ आता है। और इसी तरह से एक और सिस्टर की शेयरिंग है, वो कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो थैंकफुल टू यू दैट यू एज इफ आई हैड नॉट ज्वाइंड यू दैट कुरान कोर्स आई वुड हैव बीन अ मेंटल पेशेंट। Honestly, Quran is the best remedy of my mental problems. जी, यकीन कीजिए, आज मैं अपने आप को और हर उस कुरान टीचर अपने आप को खुशकिस्मत समझता होगा जब लोगों के ऐसे मैसेजेस आते हैं। मैंने मेडिकल प्रोफेशन को बड़े क्लोजली देखा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जब कोई मरीज हमारी दवा और हमारे इलाज और रिकमेंडेशन से ठीक होके जाता है ना, तो हमें उस दिन बहुत सुकून मिलता है, सूदिंग फीलिंग आती है। तो मैंने कहती हूँ, आई कैन फील इट, इट्स ट्रू। एक डॉक्टर को किसी की जान बचा के जो सुकून मिलता है ना, एक कुरान के पढ़ाने और उस पे मददगार लोगों को, कुरान के साथ लोगों के जुड़ने के बाद उनके डिप्रेशन, उनकी परेशानियों के दूर होने का मौका मिलता है। आप में से भी जो साथी आज सुन रहे हैं, पहली दफा सुन रहे हैं या आगे भी सुनते हैं, लिखिए इन तेरह सपारों ने आपको क्या दिया, और इसको फिर आप कई गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए जब आप इसको सवीलुल जन्ना में लफ्ज ब लफ्ज पढ़ेंगे। अभी तो हम 2.5 से 3 घंटे में एक पारा करते हैं, फिर आप एक लेसन आमतौर पर जो सवीलुल जन्ना हम ऑफर करते हैं ना, उसमें एक लेसन तकरीबन 1 आवर 45 मिनट से लेकर एवरेज 2 आवर तक का होता है, और उसमें तकरीबन 10 से 15 आयात होती हैं। तभी तो आपको फ्यू मंथ्स में पूरा कोर्स करवा दिया जाता है, फिर आप देखते हैं कि हकीकत में ये कुरान क्या तब्दीली लाता है। लेकिन फिर भी आप अपनी शेयरिंग्स भेजिए, जो अच्छी शेयरिंग्स होंगी हम अपने चैनल्स पे दाएंगे और आप लोगों को शेयर कराएंगे, क्योंकि दूसरों के बारे में सुनना पढ़ना समझ आता है। और खास तौर पे भी जो पहली आयत पढ़ेंगे ना कि कुछ लोग क्यामत के दिन हसरतें करेंगे, तो कल आप ही लोगों में से किसी ने एक वीडियो भेजी, तवालत का शर्त डर था और कुछ रीजंस, वरना आपको सुनवा दूं कि एक शख्स जो क्रिश्चियन से इस्लाम पे आए और किस तरीके से वो मुसलमानों में से किसी के अच्छे सलूक से मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ आए, और आप वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी का मिशन यह है कि मैं लोगों को इस्लाम की खुशी दूं। और 80 के करीब, शायद वो कह रहे थे 60 से 80 लोग, कि जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करीब रहने वालों में इस्लाम पे आ चुके हैं। मैं आपसे आप सवाल करूं, आप खुद से कीजिए, हम सब एक दूसरे से करें। इस्लाम से बाहर वाला शख्स इस्लाम पे आया तो उसको हयातन तैयब मिल गई और उसने 70-80 अपने खानदान के लोगों को इस्लाम दे दिया, तो हमने कुरान से खुशी पाई, तो क्या मेरी वजह से मेरी फैमिली के 70-80 लोग कुरान से जुड़ गए? क्या उनकी जिंदगियां खूबसूरत हो गई? ये आपका मेरा खुद से किया हुआ एक सवाल होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, सारी बातों को हम करते जाएंगे इंशाल्लाह। आज मैंने नियत कर ली है जिंदगी इब्ने वफा की, तो ये बुक आपको पढ़ानी है। ये अच्छी खासी बड़ी बुक है और मैं कह सकती हूँ कि इसके बाद डिप्रेशन खत्म, दुख खत्म, तकलीफें खत्म, क्योंकि हयातन तजीबा होगी। एक शर्त है इन सारी चीजों में, और वो क्या है, देखिए आगे, नेक आमाल पर सवाब मिलने के लिए मुसलमान होना शर्त है, क्योंकि अल्लाह ने पहली बात ही तो यही कर दी ना, वहुवा मोमिनुन, और इस पे हम बात कर चुके कि बगैर रजिस्ट्रेशन करवाए तो कोई इदारा आपका नहीं चेक करता। आप देखिए, नूरुल कुरान की भी बात करूं, हर चीज खुली पब्लिकली हर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, अपने भी डाल देते हैं, दूसरे कोई ख्वाहिश करता है कि आप हमारे चैनल पर डाल दें, बिस्मिल्लाह। आप में से भी कुछ सुन के अगर कहता है कि बाकी पारे या अगले इन पारों को किसी जगह शेयर करना है, तो बिस्मिल्लाह। लेकिन फिर भी एक बहुत ही कह लीजिए प्रोफाउंड किस्म का छोटा ग्रुप होता है जिसके हम रेगुलर स्टूडेंट्स को डालते हैं। जाहिर है कि उनका डाटा हमारे पास, उनके नाम, उनके ग्रुप बनते, उनका रिकॉर्ड कीप किया जाता है, और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो डिफरेंट जगहों से कुरान से फारिग होते हैं। तभी वही तो लोग आज आपको अंसारुल्लाह में दिख रहे हैं। आज हमारी जितनी टीम आपको दिखती है, मैं कह सकती हूं कि इनके लिए शर्त है कि वो कुरान से गुजरे, वरना इस रस्ते में तो ऐसे ऐसे दाव पेच आते हैं कि वो काम तो दीन का एक तरफ गया, आपस की लड़ाइयां शुरू हो जाए, बदगुमानियां शुरू हो जाए। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ इस्लाम मस्ट है, और ये अगर ठंडे दिल से बैठकर कोई भी सोचे तो ये कोई इतना मुश्किल फैसला नहीं है, क्योंकि मुस्लिम होने का मतलब कोई कल्ट नहीं है, कोई गिरोह नहीं, ये माँ बाप का दीन नहीं है, ये आपका अपना दीन है। ये वो दीन है जो फिरौन को भी डूबते हुए समझ आ गया था कि मूसा का दीन सच है, और आज भी हमारा ईमान है कि हमारे वो भाई बहन जो इस्लाम से दूर हैं, भी इस्लाम से बाहर हैं, उनकी मौत के वक्त उनको पता लग जाता है, लेकिन उस वक्त फिर मौका नहीं रहता। तो चंद चीजें नोट कीजिएगा कि मोमिन अगर से फकीर भी हो, इसकी जिंदगानी दौलतमंद काफिर के ऐश से बेहतर और पाकीज़ है। एक बहुत ही प्यारे स्कॉलर गुजरे, अल्लाह ने उनसे बहुत काम लिया, हाफिज इब्ने हजर अल अस्कलानी, और जो हदीस जानते हैं पढ़ते हैं वो इस नाम से इतनी मोहब्बत करते हैं जैसे अपने किसी दादा पर दादा से की जाए, क्योंकि जो इन्होंने शुरुआत लिखी है हदीस की, अपने वक्त के बड़े मुहद्दिस भी थे और साथ ही साथ दौलत भी बहुत थी। और ये भी बात, मैं एक रास की बात आपको कान में बता दूं अपने उन प्यारे भाई बहनों के लिए जो अभी तक इस खौफ की वजह से अल्लाह की पसंदीदा जिंदगी या इस किताब की तरफ नहीं आते कि माल नहीं रहेगा, तो एक जुमला आज लिख के रख लीजिए, सच्चे दीन के साथ कभी माल की कमी नहीं हुई। जो सच्चा मोमिन होगा, अल्लाह ताला उसको किसी अगर आजमाइश में डाल के फकीर भी बना देना, फिर भी उसके पास आसूदगी होती है, फिर दिल की भी दौलत होती है। लेकिन जो दीन की दावत देते हैं, जो दीन की तरफ बुलाते हैं, वो चंदे नहीं मांगते, और हम इसकी गवाही दे सकते हैं आपको। कभी लोगों को मजबूर करके, दरवाजे बंद करके फंड रेजिंग डिनर हमने नहीं किए। अमेरिका कनाडा में रहने वाले हमारे सब ऑडियंस इस लफ्ज से बहुत अच्छी तरह मुतारिफ है। फंड रेजिंग डिनर नाइट में मस्जिदें इसी से बनती है, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त का रिवाज है। अब जाहिर है जब लोग नहीं देते तो बाय हुक और बाय क्रुक कई दफा दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, खाना नहीं खोला जाता, दुआ नहीं कराई जाती कि आप पहले पैसे करें। हमारा आज का टारगेट $5 लाख है, 10 लाख है, ये पूरा करें तो फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। आज तक नूरुल कुरान के प्लेटफॉर्म पे, और ये बात ह्यूस्टन से चली है, हमारे कुछ साथी इस साल ह्यूस्टन से भी सुन रहे हैं, मैं उनकी भी गवाही चाहूंगी कि आज तक कभी हमने डोनेशन के नाम पर किसी को मजबूर नहीं किया, किसी को बाउंड नहीं किया। कभी अपने प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस किए जाते हैं, जैसे पिछले 2 साल से 3 साल से अब होने लगे, अलबरका है, इसी तरह नॉर्वे का लिगत है, हमारा यूके का एक प्रोजेक्ट है, इसी तरह डिफरेंट मुल्कों के, आप वेबसाइट पर जाइए सर्च कर लीजिए, आपको मिलते हैं कि लोगों को नेकियों के मवाकों में हिस्सा डालने के लिए बताया जाता है। कभी जहां कोई प्रोजेक्ट होता है, और हदीस में कि नेकियों की रगबत दीजिए, मन दाल अल खैर कफाइली ही, इसके बावजूद आज तक कभी कमी नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बिनेमति ततिम्मु सालिहात, कमी नहीं हुई। आज तक किसी मुल्क के बिल नहीं पे नहीं हुए, ये नहीं हुआ। हमारा वेब का आप देखिए, बेशुमार काम है इस वक्त, नेट के प्रोसेस को देख लें, आपके सामने है सब कुछ, कभी कमी नहीं हुई। क्यों? कि वो खुद पूछते हैं। देखिए, इल्म वालों का काम है इल्म दें, जो मैं देने की कोशिश करती हूँ, जो थोड़ा सा मुझे मिला। हमारे साथ ही अपनी स्किल्स दे रहे हैं इस वक्त, उनका मेरे से ज्यादा हिस्सा, ये भी हमेशा याद रखिएगा। कभी आप मुझे दुआ में शामिल करें तो हमारे साथियों को शामिल रखा करें, जो हमारी एक अल्लाह की रहमत से एक आफाकी टीम बन चुकी है वर्ल्ड वाइड अंसारुल्लाह के नाम पर, जो इंटरनेशनल लेवल पे दिन रात अपनी स्किल्स को अल्लाह के सेक के लिए देते हैं। वो आपके लिए, आपकी दुआओं का मुस्तकिल हिस्सा होना चाहिए। हम सब अपना हिस्सा डालते हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों की कमी नहीं, जो खुद फोन कर करके पूछते हैं, जो खुद मांगते हैं हमें लिंक्स दीजिए, पेपॉल क्यों नहीं काम कर रहा। पे इसलिए नहीं कर रहा कि वो आपके पैसों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता था। पेपॉल पे आप $100 देते हैं तो उसमें $7-8 वो ले जाता था। अब ये मैं उसकी बुराई नहीं कर रही, वो खुद समझ आता है। उसके अल्टरनेट में इस साल कुछ चेंजेस की गई वेबसाइट के सिस्टम्स में, ताकि आपका एक एक पैनी बचे। हमारे घर भी नहीं रहता, आपके भी नहीं रहता, वो तो उनकी कंपनीज को चला जाता है। तो अगर इसमें थोड़ी सी एफर्ट करके, अगर आपको नए सिस्टम में कुछ ना कुछ मदद चाहिए, हर तरह के साथी रेडी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल कुरान ब्लेस्ड है कि उसको कभी भी लोगों से नहीं कहना पड़ा। हमेशा लोगों के मैसेजेस और पर्चियां सेव्ड होती हैं, कोई काम हुआ तो बताइएगा, कहीं हिस्सा डालना। अब जोहराबाद में क्या हो रहा है, अब तामीर हो रही है, कैसे पैसे दें। अच्छा, हमारे कान में बात कही है कि हॉस्टल बन रहा है, कैसे बनेगा। अच्छा, वो राशन प्रोजेक्ट इस साल क्यों नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बिनेमतिही ततिम्मु सालिहात, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है इन चीजों को देखने का, मेरा तो ये फील भी नहीं। लेकिन ये गिनती छुटती बातें उड़ती बुढ़ती जो पड़ती है ना, वो बता रही हैं आपको, मेरा दिन रात एक काम है, आपको इल्म दो। और कल क्यामत के दिन अल्लाह ने ये पूछना, इल्म वालो तुमने इल्म दिया कि नहीं दिया, माल वालो तुमने माल दिया कि नहीं दिया, घर वालो तुमने घर दिए कि नहीं दिए, गाड़ियों कोठियों बंगलों वालो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम क्यों लोगों के पीछे पड़े। तो याद रखिएगा, अल्लाह दौलत देता है। तो बात कितनी आगे चलेगी, हफ़ज इब्ने हजर अल अस्कलानी से, अल्लाह उनके हक में इसको सदका जारिया बनाए। एक दिन अपनी बड़ी शाही सवारी, अच्छा घोड़ा पहनते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, और याद रखिए किसी दीनदार को अच्छे कपड़े पहनते देकर कभी बुरा ना मनाए, उसको लैंड क्रूजर से निकलता देखकर कभी बुरा ना मनाए, अल्लाह कहते हयातन तैयबा। तो खैर, एक शख्स जो नॉन मुस्लिम था और बेचारा किसी भी नशे में टूटा पड़ा, सड़क पर गिरा हुआ था, होमलेस कह लीजिए, उसने रोक लिया। अब उसको भी कुछ ना कुछ तो अल्लाह के नबी की बात पहुंची हुई थी, कहने लगा कि ए आलिम, जरा रुक इधर, मुझे तेरे नबी के एक बात पे एतराज है। तेरा नबी कहता है, और वो हदीस सुना दी जो आपने सब नहीं सुनी हुई है, क्या दुनिया सिजनुल मोमिन और वरौसतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना है, यानी कैदी की जिंदगी है, और काफिर के लिए एक जन्नत एक बाग है। लेकिन मैं तो तुझे अपने से बड़ा अच्छा देख रहा हूं, जबकि तू मोमिन कहता है खुद को, और मेरा ये हाल क्यों है। अब सोचिए जरा, ये है इंटेलेक्चुअल हमले, आज इनका जवाब सीखने की जरूरत है। बड़े शाने बेनियाजी से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरे भाई जो तूने कहा है वो भी ठीक है, अब जो मैं कहने लगा हूं इसको सोच। अब जरा आप सब कुछ छोड़ दीजिए इस वक्त, ये रकाए के कल्बी का वक्त है, सारा कुरान भी पढ़ जाएंगे, दिल नरम ना हुआ तो दिल के खोट और खपट और दिल के बुखल नहीं दूर होंगे, और दीन पे ये जो शक और शुबे है ना, ये नहीं खत्म होंगे। कहने लगे कि तू मुझे जिस हाल में देख रहा है, तुझे लग रहा है मैं बड़े अच्छे हाल में हूं, लेकिन मेरे रब ने मुझे जो जन्नतों में देना है ना, उसके मुकाबले में ये कैदी का लिबास है। अल्लाह ने मुझे जन्नतों में जो देना है ना, वो तो तू सोच भी नहीं सकता, और ये जो तू अपने इस हाल को इस वक्त बुरा हाल समझ रहा है ना, अगर तू अपने इस कुफर के और बातिल अकीदे पे दुनिया से चला गया ना, तो तुझे वहां जाके जो सलूक तेरे साथ होगा ना, उसके मुकाबले में तुझे ये अपनी जन्नत लगेगी। मना मिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा वहुवा मुमिनुन फलनुख्यिन्नहु हयातन तैयबा। आज मेरी इस दरख्वास्त पे एक बहन समझ लें, जो समझ लीजिए, एक मोहसिन, एक मुआविन, एक मददगार, बस लेकिन याद रखिए कि सिंसियर, योर सिंसियर, मैं हर एक को दावत दूंगी। और खास तौर पे वो जो भी दीन से थोड़ा सा दूर अपने आप को समझते हैं, मैं तो किसी को नहीं समझती, हर एक को अल्लाह ने एक मौका दिया हुआ है। लेकिन आज के बाद अपना ये कॉन्सेप्ट दूर कीजिए, सही कीजिए ये कॉन्सेप्ट, ये गलत फहमी दूर कीजिए कि अल्लाह सुबहान तआला के दीन पे आके दुनिया खराब हो जाती है। ऐसा नहीं होता। मोमिन अगर से फकीर भी हो, इसकी जिंदगानी दौलतमंद मुनकर के ऐश और आराम से बेहतर और पाकीज़ा है, और इसकी दलीलें हैं। आप में जिन लोगों ने पिछली जिंदगी भी गुजारी और आप कुरान की बाशऊर जिंदगी में, उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि आप डिप्रेशन नहीं, अब परेशानियां नहीं है। और मोमिन जानता है कि इसकी रोजी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से है और वो अपने मुकद्दर पे राजी भी है। आप कह सकते हैं कि मोमिन का दिल हर्स की परेशानियों से महफूज और आराम में है। और एक और बात लिख लें, जो अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल पर नजर नहीं रखता वो हरीस रहता है, हल में मजीद, हल में मजीद, कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। फिर हमेशा रंजो गम, मुश्किल और इल्म खूब हासिल करने, इल्म माल और हासिल करने की फिक्र में परेशान रहता है। यहां मैं अपने सब भाइयों को भी कहूंगी, खासतौर पर जो बिजनेस में है, जिनका दिन रात माल कमाने में जाता है और फिर भी असुदगी नहीं है। ठीक है, आपको माल की मोहब्बत नहीं है, आपके ऊपर लाइबिलिटीज हैं, जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिंदगी का मकसद नहीं है। आप देखिए, जहां हमने शुरू में दूसरे पारे में पढ़ लिया था, वली कुल विजहतुन खुबा मुवल्लीहा, और विच कहते हैं उस फोकल पॉइंट को जिसके इर्द गिर्द आपकी जिंदगी घूमती है, फिर आपका साल घूमता है, आपका महीना घूमता है, आपका हफ्ता और आपका दिन, आज सुबह हुई शाम तक, जिस चीज को आप फोकल पॉइंट कहेंगे वो आपका विच है। माल को विच बनाना सहाबा की और असलाफ की खूबी नहीं थी। वो माल कमाते थे, रिस्के हलाल कमाता है मोमिन, अबू बकर सिद्दीक भी कमाते थे, यहां तक कि जब खिलाफत की जिम्मेदारियां पड़ी तो वो छोड़ना पड़ा और फिर बैतुल माल से एक महसूस हिस्सा लिया और बाद में जाते जाते वो भी दे गए दुनिया से कि मैंने ये भी नहीं रखना अपने पास, ये मेरा नहीं, अल्लाह का है। अल्लाह के नबी का सारा वरसा माल गनीमत में गया, लोगों में गया, तो लिहाजा कमाना है। लेकिन गम न बनाइए, अपने आप को आंखें बंद करके पूछिए, मेरा गम क्या है? जो पहली सोच है ना, वो आपका विच है। दूसरा सवाल कीजिए, अगर मैं मर गई किसकी फिक्र है? ये है आपका विच। अगर दौलत है, हाय कारोबार क्या होगा, कोठी का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, वो उसका लेना उसका देना, अगर ये आपका गम है तो यही है आपका विच। और बच्चे और बच्चों की शादी और उनकी जायदादें और उनके कहने, तो बच्चे विच है। और अगर को आपको गम है, अल्लाह भी तो इतने अधूरे काम, अल्लाह भी तो इतने अधूरे सेट, अल्लाह भी तो इतने प्लान, अल्लाह मेरा दीन, मैं अभी तो साथी कच्चे, अभी तो बड़ों को जरूरत है, अल्लाह थोड़ी मुद्दत दे दे, तो दीन आपका विच है। और इस किताब को विच बना के देखिए, कसम नहीं खाना चाहती इधर बैठ के, क्योंकि आपको मेरी बात का वैसे ही यकीन है इंशाल्लाह कि हयातन तय्यबन का मजा ही आपको तब आता है जब कुरान, इसका पढ़ना, इसका पढ़ाना, इसकी खिदमत करना, इसको लोगों में फैलाना आपकी जिंदगी का विच बन जाता है। और फिर आपको समझ आता है कि मुनकिर के तमाम नेक अमाल भी बर्बाद हो जाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग अच्छे काम करते हैं लेकिन इस्लाम नहीं है। इस्लाम है तो शिर्क है तो कुफर है, साथ बिदात है, साथ कुछ गलत अकायद है, कहीं अकीदा तकदीर में बिगड़ा हुआ है, कहीं जादू टूनों में फंसे हैं। तो अमाल की कबूलियत के लिए आज ये जुमला याद करके उठिएगा यहां से कि आपने अपने अकीदे को बेहतर करना है। फिर इसको एक और एंगल से देखिए कि बंदा मोमिन कुरान से जुड़ा होता है, आप भी होंगे। आज भी हमारे वो भाई और हमारी वो बहनें जो एक दफा कम अज कम फातिहा से नाश्ता कुरान पाक को सीख चुके हैं और स्टूडेंट बन के सीखिए, वी हैव टू। अगर आपको मेडिकल पढ़ने के लिए 15 से 20 साल चाहिए थे, आपको लॉयर बनने के लिए 25 साल चाहिए थे, आपको इकोनॉमिक्स सीखकर बेस्ट बिजनेसमैन बनने के लिए आपको 25 इयर्स चाहिए, आपको कम से कम 2 से 2.5 साल बाकायदा क्लास बनके स्टूडेंट बनकर सीखना पड़ेगा। आप फुल टाइम करें, आप पार्ट टाइम करें, आप वीकडेज में करें, आप वीकेंड पे करें, इट्स अप टू यू। अपने हालात को देखिए, इस अगले पारों के सफर में नियत कीजिए कि मैंने अपने लिए कुछ वक्त मुस्तकिल बुनियादों पर रखना है। अगर आप रोज के 2 घंटे लेंगे तो आपके 4 से 5 साल लगेंगे, अगर आप रोज के 3 घंटे ले लें तो 3 साल लग जाएंगे, और अगर आप थोड़ा सा इससे बढ़ा लें तो 2 साल एक एवरेज टाइम है। क्या मुश्किल है? 24 घंटों में से सिर्फ आप 2 से 3 घंटे नहीं दे सकते उसको, उसकी बात को समझने को जिसने वक्त दिया। तो वलस्र इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनु वामिलुस सालिहात। जितना ज्यादा आपको इस बात का यकीन आता जाएगा आपको ये वक्त देना आसान होगा। और याद रखिए ये कुरान की दौलत ना तो कब्र में होगी कि आप पढ़ सके, ना जन्नत में होगी। दिस इज द ओनली पॉइंट दिस दुनिया। और याद रखिए सिर्फ औरतों का काम नहीं है और ना सिर्फ ये मर्दों का काम है, बल्कि आज आपने औरत मर्द को एक जगह खड़ा देख लिया और इस पूरे पारे में आप औरतों को मर्दों को साथ देखेंगे। तो जब कुरान से जुड़ेंगे ना तो फिर तवक्कुल आएगा, सब्र आएगा, इस्तकामत फिर दीन होगी। जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव होते हैं। मुझे आज से कई साल पहले हमारी कनेटिकट से एक बड़ी प्यारी सिस्टर थी, पता नहीं अब किधर हैं, अगर सुन रही हैं तो जरूर रब्ता करें। उनका वो जुमला नहीं भूलता जो एक वीडियो में रिकॉर्ड हो गया था हमसे और मैंने कई जगह सुना, तो मुझे याद है कि उस्ताजा जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए कि अगर मैं कुरान से ना जुड़ी होती तो टूट जाती। और ऐसे सैकड़ों जुमले हमारे मेल बॉक्स में पड़े हुए, लेकिन ये सच है, कुरान आपका सहारा बनता है, कुरान आपका दोस्त, कुरान आपकी दोस्त, आपकी सहेली, आपकी माँ बहन, आपके शोहर, बच्चों से ज्यादा आपका दर्द मन दर्द ख्वाह बन जाता है। शर्त एक है कि आप एक दफा इसको आजमा कर देखें, और जितना आप इसको आजमाएंगे अल्लाह ताला आपका दिल उतना ही खोलता जाएगा। और इसके साथ साथ अपनी जिंदगी को नेक अमाल में फिर आप बढ़ता हुआ देखते हैं। फिर अगर कभी कहीं कमाइयों में कोई गलत चीज होती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ईमान वाला रिस्क हलाल की तरफ आता है। और जब तैयब रिस्क आ जाता है ना, तो फिर उसके बाद आपको वाकई बुराइयां बुरी लगती हैं। अगर आज आपसे कोई कहते ना ये काम छोड़ दो ये बुरा है, तो आपको गुस्सा आएगा, आप कहेंगे देखा यही वजह, इसीलिए मैं नहीं जाता इनके पास, ये जजमेंटल बड़े हैं। आज आपको बुराई बुराई नहीं दिखेगी, कुरान की टॉर्च खुलेगी, कुरान की रोशनी, कुरान का नूर आएगा तो फर्क समझ आएगा। और मैं इसको एक इमेजिनेशन से देखती हूँ कि अंधेरे में कोई चीज पकड़े बड़ी नरम है, सॉफ्ट, आप कहते वाह रुई का, यानी रेशम लगेगा आपको, आप कहते देखा कितना प्यारा रेशम का, किसी ने मेरे पास कोई एक रस्सी रख दी, कोई एक डोरी रख दी, सो सॉफ्ट, इतने में कोई आके लाइट जला दे, चीखें निकल जाएंगी, ये तो सांप था। अंधेरे में सांप और रेशम का फर्क पता नहीं चलता, कुरान का नूर खुलता है, कुरान का नूर जिंदगी में आता है तो बुराइयों का फर्क समझ आता है। और फिर एक वक्त आता है आपके मकासिद आला हो जाएंगे। मोमिन की हयातन तय्यबा आला मकासिद के साथ चलती है। कैसे? ख्वाहिशात दिन ब दिन कम से कम और दिल और नजर पाक। कैसे? अलामा इकबाल इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में कह गए, मैं उसी को कह दूं तो बेहतर होगा। कहते हैं कि हर दो जहां से गनी इसका दिले बेनियाज, इसकी उम्मीदें कलील, इसके मकासद जलील। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे कई लोग सब्र में आ जाते हैं शेर को पढ़ के, प्रैक्टिकल लाइफ में, कि जिनकी उम्मीदें बहुत थोड़ी हैं दुनिया में, उनकी जरूरियात बहुत थोड़ी हैं, लेकिन मकासद जलील है। आपको अगर ये जिंदगी मिल जाए ना, ये है हयातन तय्यबा, बामकसद जिंदगी। लोगों में बहुत अच्छे अच्छे काम है, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज पे बहुत लोग हैं, कुकलेबाद में और एनजीओ में काम करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब, लेकिन सबसे बड़ी कॉज आला मकसद क्या है, इंसानियत को आग से बचाइए। फायर ब्रिगेड का नाम सुनते, आग के अलार्म सुनते ही एकदम दिल में कुछ होता है ना, तो इसी तरह से आपकी मेरी जिंदगी का आज के बाद मकसद जलील लिखे, खुद को और अपने साथ वालों को आग से बचाना है। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आगे जाकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और फिर दूसरी बात याद रखिए, मोमिन जब मोमिन बन जाता है ना तो बड़ा ही पुरकशिश हो जाता है, दिलों के खोट खपट दूर होते हैं। हयातन तय्यबा जब नहीं थी, दोस्तों की महफिलों में कह कहे और दिल में जलन और कुड़न, हाय क्या पहन के आ गई, हाय इतना अच्छा जोड़ा इसका, यानी वो दोस्तें वो सहेलियां जो साथ उठती बैठती थी, दिलों में कदूरते, उनके बच्चों के रिश्ते हो जाने पे दिल में अपने बच्चे का गम। सच बताइए इस खत गलत कह रही हूँ कि ठीक कह रही हूँ? पार्टियां, किटी पार्टीज, निटी पार्टीज, मंगनी, ओपटन, लेकिन दिलों में कदूर थे, तो हयात तय्यब नहीं थी। अपनी दोस्तों से आपका दिल खुश नहीं, दूसरों से कहाँ होंगे। लेकिन एक दफा जब आप इस लेवल पे आएंगे ना, सब लोग मजबूर हो जाएंगे आपसे प्यार करने के लिए। मोमिन के लिए अल्लाह जो एक बहुत नकद अलामत दुनिया में रखता है ना, वो उसके लिए दिलों में प्यार डाल देता है। आगे सूरत मरियम में आपको कोट करा दूंगी हदीस इंशाल्लाह कि जिब्राइल से शुरू करके उस सिलसिले को अल्लाह ताला दुनिया के लोगों के दिलों में उसका प्यार डाल देता है। और अल मोमिन कौन होता है? मोलिफ यानी मोमिन मोहब्बत करने वाला भी होता है और उसे मोहब्बत की जाती, उल्फतें डाल देता अल्लाह दिलों में मोमिनों के लिए। और अल्लामा इकबाल इसको क्या खूबसूरत रंग में कह गए कि इसकी अदा दिल फरेब, इसकी निगाह दिल नवाज, नरम दमे गुफ्तगु गरम दमे जुस्तजु, रस्म हो या बज्म हो पाक दिलो पाक बस। ये है मेरी आपके लिए भी दुआ, अल्लाह आपको ऐसी शख्सियत बना दे। लोग रात की करवटों में आपके लिए दुआएं करें, यकीन करें कभी कभी तो ऐसा होता है जब सुबह उठता है इंसान, टाइम देखने के लिए फोन उठाता है तो कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं, उस पर लिखा होता है मैंने आपके लिए दुआएं की। मैं जब अपने माँ बाप के लिए दुआ करूं, जब मैं अपनी अम्मी के लिए दुआ करूं तो आपके लिए करती हूं। अच्छा कभी नोटिफिकेशन आते हैं ना जो डिफरेंट मुल्कों की क्लासेस के या कुछ व्हाट्स ये यूट्यूब के ऊपर प्रीमियर्स होते हैं तो वो आया होता है ना स्क्रीन पे फोन की, तो मैं रो पड़ती हूं कि मैं तो सो रही थी तो ये कौन लोग हैं, फरिश्तों की तरह काम करवा रहे अल्लाह इनसे। रात दिन आपकी बातें लोग दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, ये अल्लाह की रहमत है, ये है हयातन तैयबा, अल्लाह हमें इसके काबिल कर दे। अब कुछ चीजें तो हम कोशिश से लेंगे और कुछ दुआओं से लेंगे, तो आज की दुआ फिर इसी नाते से कि आपकी मेरी जिंदगी हयातन तैयबा बन जाए, लीजिए दुआ। सही मुस्लिम की दुआ है 6903, बस इसको आज के बाद याद करना शुरू कर दें, मांगना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता याद भी हो जाएगी। सही पढ़नी नहीं आती तो आपको पढ़ाई जा रही है, आप याद भी कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी यल्लती हुवा इस्मतु अम्री, वस्लिह ली दुनिया यल्लती फीहा माआशी, वस्लिह ली आखिरती यल्लती फीहा मआदी, वज्अलिल हयात ज़ियादतन ली फी कुल्ली खैर, वज्अलिल मौत राहतन ली मिन कुल्ली शर। अल्लाहु अकबर। वाकई सिल्वर कलर से लिखा हुआ मेरी स्क्रीन पे, ये तो सोने के पानी से लिखने वाली दुआ है। ए अल्लाह तू मेरे दीन को संवार दे जो मेरे मामले का मुहाफिज है। अब मैं अगर इस दुआ को सिखाने बैठ गई तो एक घंटा तो इस पे लगेगा जो नहीं करूंगी। मुझे याद नहीं है हिस्नुल मुस्लिम में या दुआओं के किसी सेशन में इसकी तफसीर हुई है कि नहीं, नहीं हुई तो लिख ले इंशाल्लाह, रमजान के बाद के कोर्सेज में किसी जगह करवा दूंगी इंशाल्लाह। क्योंकि आमतौर पर समझ नहीं आता कि दीन को संवार दे जो मेरे मामले का मुहाफिज है, ये कैसे होता है। बस अभी याद कर लें। फिर अगली बात, मेरी दुनिया संवार दे जिसमें मेरी मईशत है, मेरी आखिरत संवार दे जिसमें मैंने लौटना है, मेरी जिंदगी को हर भलाई में इजाफे का सबब और मौत को हर बुराई से राहत का सबब बना दे। वो एक शेर पड़ा हुआ ना कि मर के भी न चैन पाया तो किधर जाएंगे, ये आपकी दुआ है इधर, कहला मर के चैन आ जाए, मेरे दुनिया के छोटे बड़े गम जो है ना मौत के बाद ना रह जाए। अल्लाह आपके मेरे हक में ये सब के लिए दुआ कबूल कर ले। और आज की हदीस सुनन इब्ने माजा की 242, अबू हुरैरा इसके रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन को इसके आमाल और नेकियों में से इसके मरने के बाद जिन चीजों का सवाब पहुंचता रहता है ये है हयातन तैयबा। मेरा कमेंट है ये लिख लें, हयात तैयबी होती है कि आप इधर हैं और आपके अजर उधर जा रहे हैं, इस दुनिया में रहकर नेकियां सदका जारिया अच्छे अकाउंट्स आपके अकाउंट्स ही खुलते जा रहे हैं डिफरेंट, और जब आप इधर से जरा से उधर गए पर्दा हुआ और आप आखिरत की तरफ पहुंच गए तो क्या वो अकाउंट क्लोज हो गए? ना ना ना, फिर इधर से जाना शुरू होगा। ये ड्यूल एक्शन है। मोमिन की हयात तैयब क्या है कि अपनी जिंदगी में रखता हुआ दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो उसकी तरफ डाल दी जाती हैं वो इस दुनिया में रह के फरिश्ते भी कहते होंगे अल्लाह वाकई तूने सच कहा था कि नियालमु माला तालमुन, मैं खूब जानता हूं जो तू नहीं जानता तुम नहीं जानते, उनको मैं देख रहा होता हूं लेकिन वाकई बंदे की नेकियां देख के फरिश्ते हैरान हो जाएं। और दूसरी तरफ लिखिए बंदे का सदका जारिया देखकर फरिश्ते हैरान हो जाएं, ये है मोमिन की हयात तैयब। तो आज से अपनी जहद ठीक करनी है, ऐसी जिंदगी गुजारिए जो दुनिया में रहते हुए वहां वालों को हैरान कर दे और आपके जाने के बाद यहां वालों को हैरान कर दे। तो वो तीन चीजें हैं जिसमें देख लीजिए हदीस की तरतीब वही है जो आपके सामने है, हमने चेंज नहीं की सिर्फ ये सोचने के लिए कि अच्छा जी आपको हम कुरान की तालीम की बड़ी अहमियत बता रहे हैं और हम चूंकि ये काम करते हैं तो फिर हम आपसे ये आपको यही बता दें, ऐसा नहीं है। بلکہ اللہ کے نبی نے پہلی چیز بتائی علم جو اس نے سکھایا اور پھیلایا. علم سیکھی اور سکھائیے. خیرکم من تعلم القرآن و علمہ. اور ومن ولاہ کے لفظ حدیث میں ایک میں اس کی مدد کیجئے, اس کو لے کر اپنا حصہ ڈال دیجئے. کیونکہ جب علم سکھانے سیکھنے کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہمیں تو آتا ہی کچھ نہیں. کیوں نہیں آتا؟ اس وقت آپ جو کمپیوٹر چلا رہے ہیں یہ علم تھا نا. کوئی علم برا نہیں ہوتا, علم دنیا کا بھی علم دینی کے کام آ رہا ہے. اور اگر آپ کو مجھے یہ نہ آتا ہوتا تو ہم وہ کیسے کرتے؟ تو کسی گلٹ میں نہ جائیں کہ ہم تو علماء کے گھر میں نہیں پیدا ہوئے اور ہمیں تو شروع سے عربی کتابیں نہیں پڑھائی گئیں. کوئی بات نہیں ہے, جو پڑھایا ہوا اس کو اللہ کے رستے میں کھپا دیجئے. اور پھر دوسری چیز, نیک اور صالح اولاد جو چھوڑ گیا. میں آپ سب کی اولادوں کے لیے دعا کرتی ہوں. اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی اولادوں کو, ہمارے رشتہ دار, ہمارے غیر, ہمارے مسلمان امت مسلمہ کے ایک ایک بچے کو اپنے ماں باپ کے لیے بہترین صدقے جاریہ بنا, ثواب جاریہ بنا, گناہ جاریہ نہ بنا دے. اور اپنے بچوں کو اگر کوئی گناہ کی چیز لے دی ہے تو ان سے معذرت کر کے واپس لے لیجئے, کہیں وہی چیز آپ کے لیے آگے پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے. پھر نیک اور صالح اولاد جو چھوڑ گیا, وراثت میں قرآن چھوڑ گیا, کوئی مسجد بنا گیا, یا مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنوا دیا ہو, یا کوئی نہر جاری کر گیا, یا زندگی اور صحت اور تندرستی کی حالت میں اپنے مال سے کوئی صدقہ نکالا ہو, تو اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے. اس سارے کو جب جمع کرتے ہیں تو روایت صحیح مسلم کی جو اس میں ایک ہی آتا ہے, او صدقۃن جاریہ. تو مختلف طرق سے یہ حدیث آپ کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین زندگی عطا فرمائے. آئیے آپ دیکھتے ہیں دلوں کی باتیں اس پارے میں, پارا 14 میں انواع القلوب کون سی ہیں, کون کون سی قسمیں. نحل 22, فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون. تو القلب المنکر, منکرا دل, اللہ ہمیں اس سے بچائے. اور نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو انکاری دل ہے, میں نہ مانوں والی کیفیت ہے ان کی. پھر آیت 97 جو آپ کی میری فیوریٹ آیتوں میں شامل ہو چکی ہے اب تھوڑے سے وقت کو سننے کے بعد, وہ کیا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تو یہ قلب المومن کی کیفیت ہے, یہ کہ اس کو دنیا بھی بڑی طیب ملتی ہے. پھر آیت 105, نحل, انما يفتر الكذب الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. القلب الكاذب, القلب الكاذب, جھوٹے دل, جھوٹ گھڑنے لے. اللہ ہمیں دین کے نام پہ جھوٹ گھڑنے سے محفوظ رکھتے. اور آیت 106, نحل, ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ. مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. تو یہ ہے القلب المغضوب علیہ, وہ دل جس پر اللہ کا غضب ٹوٹ گیا. اور نحل 108, اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی, یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. القلب المطبوع علی, طبع لگے ہوئے, مہر لگے ہوئے دل. اللہ ہمیں ان سارے منکر دلوں سے بچا دے. آگے چلتے ہیں پارا 14 میں ہدایت سے متعلق آیات کا خلاصہ. سب سے پہلے سورت نحل 36, فمنہم من ہد اللہ, وہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی, اللہ ہمیں انہی میں کر دے. پھر 37 میں فإن اللہ لا یہدی من یضل. پھر 64, ہدم و رحمت لقوم یؤمنون. اور آپ دیکھیے ساری آیتیں سورت نحل میں جو آپ ابھی دیکھیں گے جب پڑھیں گے کہ نعمتوں سے بھری بھی نام سورت ہے, یعنی اللہ نعمتیں دے کر بھی کبھی کبھی بندے کو ہدایت کی طرف بلا لیتا ہے. پھر 89, و ہدم و رحمت و بشرا للمسلمین. قرآن کی خوبیاں ہیں یہ. اور پھر سورت نحل ہی کی آیت 93, من یشاء و یہدی من یشاء. 102, وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. آیت 104, لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور پھر 107, أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اللہ ہمیں اتنی آیتوں کو پڑھنے کے بعد حقیقت میں اسی کے قابل کر دے. चलिए आगे चलते हैं। अब हम टेक्स्ट पे चलेंगे। सूरत हिजर की सिर्फ एक आयत हमने पिछले पारे में की थी, पिछले पारे में एक आयत की थी। यहां आपके लिए एक फ्लो चार्ट डाल दिया गया। सूरत हिजर की आयत को अगर पूरी सूरत हिजर को डिवाइड करें तो तीन हिस्सों में ये डिवाइड की जाती है। 1 से 25 आयत जो हैं, शुरू की 25 आयतें, ईमानियाते सलासा, यानी इसमें ईमान की वो तीन बड़ी किस्मों का जिक्र है जिसका सवाल कब्र में भी होगा। तो गौर से सुनिएगा, आपको कब्र के सवालों के जवाब सिखाए जा रहे हैं पहली 25 आयतों में। तौहीद, आखरत और रिसाला, ईमान बिल्ला, ईमान बे रसूल और ईमान बिल आखिरा। फिर आगे आप देखेंगे तो आयत 26 से 48 में किस्सा आदम और इबलीस है, जिससे हम अपना माजी और अपनी असल देखेंगे। और फिर आयत 49 से 99 यानी सूरत के एंड तक ईमान बिर रिसाला। आइए देखते हैं सूरत हिजर का ये हिस्सा जो हम पढ़ने लगे हैं, आयत नंबर 2 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, रुबमा यवद्दु लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। टॉपिक है काश हम मुसलमान होते। यहां मैं अपने हर उस साथी से जो बगैर किसी तासुब के सिर्फ इखलाकी रहनुमाई के तौर पे भी इन बातों को अगर सुन रहे हैं तो उसको दावत दूंगी कि ठंडे दिल दिमाग के साथ, कोई मेरे काम नहीं कल आएगा, मैं अपनी कब्र में तन्हा होंगी और कल मेरा हशर भी तन्हा होगा, मैं मानू ना मानू लेकिन आखिरत तो है। तो उस वो इस आयत को सुने और फिर इस पे दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हक रास्ते पे माइल कर दे। रुबमा यवदुल्लसीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, वो वक्त भी होगा कि काफिर अपने मुसलमान होने की आरजू करेंगे। जी ये कब होगा, इस पे बहुत सारी तफसीर है जो आपको हम स्पीलुल जन्ना में मुख्तलिफ फॉर्म्स में दिखाते भी और पढ़ाते भी हैं, लेकिन यहां आपको सिर्फ एक कॉल, सिर्फ एक बात दे देती हूँ ताकि हिदायत की तरफ बढ़ते हुए कदमों के साथ आपको इस बात का यकीन आ जाए कि इस दुनिया में जितने भी मेरे अपने हैं, प्यारे हैं, रिश्तेदार हैं और अमूमन इन्हीं की वजह से इंसान इस्लाम को सच समझते हुए भी उसकी तरफ नहीं आता। और मुसलमानों को भी कहूंगी कि कुरान पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले मुसलमान बराबर नहीं होते। तो वो गैर मुस्लिम जो इस्लाम कबूल ना करे और वो गैर कुरानी जिसने कुरान को समझ के नहीं पढ़ा, वो सुन ले। और ये कॉल बहुत सारे तरफ से आपको मिल जाएगा। इज़ा उख़रिजा अहलु तौहीद मिनन नारी वउदख़िलुल जन्नता वद्दल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, जब तौहीद का अकीदा रखने वाले जहन्नुम से निकाले और जन्नत में दाखिल किए जाएंगे तो इस वक्त काफिर ये आरजू करेंगे काश वो मुसलमान होते। आज दुआ कर लीजिए, अकीदे की इस्लाह कर लीजिए, शिर्क और बिदत से अपने आप को पाक कर लीजिए। और एक और बड़ी वजह जो आमतौर पर मुसलमान को कुरान से और गैर मुस्लिम को इस्लाम से दूर करती है, उसका जिक्र है आयत 3 से 8 में। टॉपिक लिखिए कि लोग कुफर क्यों नहीं छोड़ते। और यहां फिर कुफर के लफ्ज को याद रखिए, इस्लाम के लिए भी ये लफ्ज आता है। वो मुसलमान जो नाम के मुसलमान है उनके लिए भी वही पैगाम है जो कि गैर मुस्लिम के लिए है। तो फरमाया ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमल वयुल्हिहिमुल अमल फसौफ यालमून, आप इन्हें खाता नफे उठाता और झूठी उम्मीदों में मशगूल होता छोड़ दीजिए, ये खुद अभी जान लेंगे। दिल पे गई ये पुकार, ये है वजूहत, खाओ पियो मौज मस्ती करो, कहा ये 4 दिन की चांदनी है, अन करीब इनके लिए हमेशा हमेशा की अंधेरी रात आने वाली है। तो याद रखिये नाफरमानों के लिए अजाब का वक्त तय हो चुका है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं किसी बस्ती को हमने हलाक नहीं किया मगर यह कि उसके लिए मुकर्ररा नविश्ता यानी लिखी हुई बात थी, कोई गिरोह अपनी मौत से न आगे बढ़ता है न पीछे रहता है। उन्होंने कहा ए वो शख्स जिस पर कुरान उतारा गया, यकीनन तू तो कोई दीवाना है। हमारे प्यारे नबी को दीवाना कहा गया, क्यों? इसलिए कि हिदायत की दूरी की वजह दुनियावी ख्वाहिशात होती है, आयत 3 में आपने देख लिया। फिर आयत 3 में आपने एक लफ्ज देखा है वयुल हिहिमुल अमल, अमल नाम रखते हैं लोग, नहीं रखना चाहिए, झूठी उम्मीदों को कहते हैं, बस जो छोटा सा लफ्ज अच्छा लगा उसको रख लिया, अमल से तो बेहतर अमल रख लीजिए, कुछ तो अमल करे बंदा। तो बहरहाल देखिए दुनिया की रगबतों के हसूल में मशगूल हिदायत की लज्जतों से महरूम लोग हैं ये। कभी अपने दिमाग में इस बात को रखिएगा, वो जोड़ा जो आपकी वार्डरोब में लग चुके और अब 2 साल से आपने पहना ही नहीं है, क्योंकि पहन चुकी जिस मौके के लिए लिया था, ये जोड़ा जब बुटीक में देखा था तो उस वक्त कैसा लगता था, और आज जान छुड़ा रहे हैं उसको, हैंग किया हुआ सूली पे चढ़ाया हुआ अपने 2 साल से, देने को दिल नहीं करता कि हाय क्या करूं इतना महंगा लिया था, पहनने को कैसे पहने, इज्जत का मसला, नाक कट जाएगी, दूसरी बार एक ही जोड़ा पहन लिया। ये है अमल। तो दुनियावी ख्वाहिशात की मोहब्बत के लिए हिदायत का रास्ता मुश्किल होता है, दुनियावी ख्वाहिशात की मोहब्बत वालों के लिए हिदायत का रास्ता मुश्किल है। दुनिया की मोहब्बत उखरवी नुकसान का बायस बन जाती है। अल्लाह आपको मुझे इससे निजात दे दे। मक्का वालों का भी यही मसला था, इसीलिए कहा करते थे, आयत नंबर 7 देखिए, अगर तू सच्चा ही है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं लाता। अल्लाह कहते हैं इनको जवाब दो, हम फरिश्तों को हक के साथ ही उतारते हैं और इस वक्त वो मोहलत दिए गए नहीं होते और वो मौत के फरिश्ते होते हैं। तो क्या पता चला कि जिंदगी जिंदगी में जो करना कर लीजिए, ये वही दीन है जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनू कहलाए। क्या मैं और आप मजनू नहीं कहला सकते? तो लोगों की हिदायत की तड़प रखिए, हयातन तय्यबा अपनी और दूसरों की पाने का रास्ता जो आज मिल गया, अल्लाह ताला इसकी हमें तौफीक दे। आगे चलते हैं, आयत 9 टॉपिक है, अल्लाह ताला कुरान पाक की खुद हिफाजत करेगा, और अगर 9 और 10 दोनों को जोड़ लें तो कुरान पाक महफूज किताब है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। हम ही ने इस कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। हमने आपसे पहले अगली उम्मतों में भी रसूल बराबर भेजे हैं। लिखिए इसको, बहुत ही खूबसूरत आयत है। यहां कुरान की जगह जिक्र का बात आई और जिक्र कुरान है। पिछली किताबों और इस किताब में बुनियादी फर्क इसी का है, यानी अगर कोई क्रिश्चियन सोच के साथ या ज्यू सोच के साथ इस बात को सुने तो उसको खुशी होगी मेरी ये बात सुनके कि कुरान पाक तौरात और इंजील का अपडेटेड वर्जन है। फर्क क्या है तौरात इंजील और जबूर और कुरान में, कि उन किताबों को भी अल्लाह ने पूरे हिदायत के पैगाम के साथ दिया था, सच्ची किताबें थी, पीछे हम सूरत मायदा में बड़ी डिटेल से पढ़ चुके, खुदन भी थी और बुशरा भी थी, लेकिन एक चीज नहीं थी और वो ये है जो आयत 9 आपके सामने, इसको नोट कर लीजिए अपने लिए, कहीं भी अपने इंडेक्स में डाल दीजिए कि कुरान और पिछली किताबों में फर्क इस बात का है कि कुरान की जबर जेर हा खा दाल जाल ज़ा, इसका फर्क तक अल्लाह ने अपने हाथ में रखा कि आई विल नॉट चेंज इट। ये पीडीएफ कॉपी थी किसी दौर में कि अनचेंजेबल थी, और अगर आज उसको भी चेंज कर रहे हैं तो इट विल यू कैंट एडिट इट। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह सुबहान तआला ने लिया, ये महफूज कलाम है और कुरान नसीहत के लिए आसान है। यही वजह है माजरत के साथ सारी उम्मत से, आज उम्मत ने कुरान के जो हिस्से बखरे अमल के एतबार से किए, कुरान के राइटिंग के एतबार से नहीं कर सके। जो आज हमने किताब बदली, वो कहते हैं ना कि किस कदर हुए जुरत वाले फकीहाने हरम, खुद बदलते नहीं कुरान को बदलते हैं। और सूरह यूनुस में सुन चुके हैं, बदल हो, जितना आज हमने कुरान को बदला लेकिन लफ्ज नहीं बदल सके। और इस पे बड़ी बातें, कैसे तारीख में कोशिशें की गई, 3 नस्लों ने काम किया था म्यूनिख यूनिवर्सिटी के तहत कि हम बाइबल के भी नुस्खे जमा करें और कुरान के भी और देखें, और उन्होंने इस बात का इकरार किया था कि कुरान के अंदर कहीं किताबत की छोटी मोटी गलतियां तो मिल गईं, लेकिन नहीं, इसके बरक्स बाकी किताबों का हाल है कि आपको रेफरेंस भी देना पड़ता है कि ये 2020 की या 21 या 19 किस साल की बाइबल है। तो इस पे एक शख्स मुसलमान हो गया था और कि उसने कहा कि कुरान चेंजेबल नहीं, और दावत में बेहतरीन नुकता है, आप अगर गैर मुस्लिमों को हयातन तय्यबा की दावत देते हैं ना, तो जब इस्लाम की दावत दें तो ये दिया करें कि कभी तुमने सुनी कोई किताब ऐसी जिसकी जुबान 1400 साल के बाद आज भी ऐसे जैसे अभी नाजिल हुई, इवन इंग्लिश बदल गई, उर्दू बदल गई। आपको मीर गालिब और मिर्जा गालिब और इकबाल के शेर क्यों नहीं समझ आते? क्योंकि उर्दू बदल गई। आपको इंग्लिश क्यों नहीं समझ आती? पुरानी शेक्सपियर की पॉइंट्स आज क्यों नहीं नस्लों को समझ आती? सबको साफ समझ आ रहा है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत कर रहा है और रहेगा। और जिस दिन अल्लाह देखेगा ना कि मुसलमानों ने भी इस पे अमल छोड़ दिया, पूरा कुरान ब्लैंक हो जाएगा, खोलेंगे लोग खाली, हुफाज के सीनों से निकल जाएगा। इसकी हिफाजत है, क्योंकि जब कोई देखता है ना कि मेरी चीज मिसयूज हो रही है तो उसको कहते निकाल दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसकी ये बेहरमती और इसको पूरा नहीं कर सकता, और ये सीनों में महफूज होने वाली किताब है, अल्लाह ने आपके मेरे लिए जुबानों पे आसान कर दी, अल्लाह इसको हमारे सीनों में डाल दे। आगे देखिए आयत 11 से 15, मुजरिमों को कुरान अच्छा नहीं लगता, यही वजह के हर दौर में अक्सरियत फिर ईमान से महरूम रहती है। वमा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानु बिही यस्तहज़िऊन, और लेकिन जो भी रसूल आता वो इसका मजाक उड़ाते, गुनाहगारों के दिलों में हम इसी तरह यही रचा दिया करते हैं और वो इस पर ईमान नहीं लाते, और यकीनन अगलों का तरीका गुजरा हुआ है, और अगर हम इन पर आसमान का दरवाजा खोल भी दें और ये वहां चढ़ने भी लग जाएं, तब भी यही कहेंगे हमारी नजर बंदी कर दी गई, बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया। यानी जिसको कुरान सुनकर नबी की जुबान से या आज नबी के किसी उम्मती की जुबान से सुनकर समझ न आया, तो इनके लिए तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएं, कोई मौजज़े भी हो जाएं, तो ये नहीं मानेंगे। इसलिए नबी आप इस पे गम ना कीजिए और इनको इनके हाल पे छोड़ दे। फिर आगे आयत नंबर 16 से 18, वही की हिफाजत है, और अगर आगे 22 तक ले जाएं तो अल्लाह की कुदरत के शाहकार है। कायनात में से अल्लाह ताला हमें कुछ दलाइल देते हैं कि जिसने इतनी महफूज कायनात बनाई, क्या वो अपने कुरान की हिफाजत नहीं कर सकता। वलकद जल नफिस समाई बुरूजम वज़य्यन्ना हलिन्नाज़िरीन, यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए इसे सजा दिया गया, और इसे हर मर्दूद शैतान से महफूज रखा है। हाँ मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे, इसके पीछे दहकता हुआ खुला शोला लगता है। यह है जी हिफाजत कुरान का एक अबदी तरीका, कि पहले आसमानों पे फरिश्तों के पास पहुंचने की कोशिश करते थे शैतीन, लेकिन जब से कुरान का नजूल हुआ तब से अल्लाह ताला ने पहरे लगा दिए। फिर आगे आयत 19 से 25, नबातात की नशोनुआ में तवाज़ुन है, यहाँ कुदरत के कुछ शाहकार हैं। वलर्द मदद ना हवल कई ना फीहा रवासिश, और जमीन को हमने फैला दिया और इस पर अटल पहाड़ डाल दिए, और इसमें हमने हर चीज एक मुअय्यन मिकदार से उगा दी, और इसी में हमने तुम्हारी रोजियां बना दी हैं, और जिन्हें तुम रोजी देने वाले नहीं हो, और जितनी भी चीजें हैं इन सब के खजाने हमारे पास हैं, और हम हर चीज को इसके मुकर्रर अंदाजे से उतारते हैं, और हम भेजते हैं बोझल हवाएं, फिर आसमान से पानी बरसाकर वो तुम्हें पिलाते हैं, और तुम इसका जखीरा करने वाले नहीं हो, हम ही जिंदा करते और मारते हैं, और हम ही बिलाखिर वारिस हैं, और तुम में से आगे बढ़ने वाले और पीछे हटने वाले भी हमारे इल्म में हैं। आपका रब सब लोगों को जमा करेगा, यकीनन वो बड़ी हिकमतों वाला बड़े इल्म वाला है। कैसे कायनात का निजाम चलाने वाला, सरकश जिन्नात के लिए हिफाजती चौकियां बनाने वाला, तो कोई अल्लाह के फैसलों को नहीं पा सकता। असल बात यह कि अल्लाह ताला जो चाहते हैं वही करते हैं, और आपने यहाँ देखा कि हर चीज उतनी ही दुनिया में अल्लाह ने दी जितनी के उसकी जरूरत थी। उसके खजाने क्यामत तक खत्म नहीं होंगे, और वक्त के साथ एनर्जी बढ़ती जा रही। पहले कोयला था, खत्म होने का डर हुआ, सुई गैस आ गई, सुई गैस की कमी का शिकार हुए तो आपको सोलर एनर्जी मिल गई, आज न्यूक्लियर मिल गई, और वही चीज जो पहले मनोटनो ईंधन से काम नहीं होता तो आज चंद ऑंसेस के साथ होने लगता है। ये मालिक की हिफाजत के तरीके हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं आगे बढ़ने वालों और पीछे रहने वालों को खूब जानता हूं। आगे है 26 से 30 में अजमत इंसान है, इंसानी तखलीक के मराहिल। वलकद खलकनल इंसान मिन सलसाले मिन हमाइम मसनून, यकीनन हमने इंसान को खुश्क मट्टी से और जो के सड़े हुए गारे की थी पैदा फरमाया। इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया, और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया, जरा सा तारुफ देखिए हजरत इंसान का, जब कभी अकड़ आए ना और अपने ऊपर मान आने लगे और बहुत ही बड़े होने का दिल चाहे और अपने आप को पता नहीं हम क्या समझने लगे, तो इस आयत को याद कर लीजिए कि इंसान तेरी असल क्या है। कैसे फरमाया कि हमने इंसान को एक काली, और क्या फरमाया, और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं इस इंसान को या एक इंसान को काली और सड़ी हुई खन खनाती मट्टी से पैदा करने वाला हूं। सोने चांदी का होता तो कभी सजदा भी जमीन पे ना करता, मट्टी का होकर इंसान इतना मान करता। तो जब मैं इसे पूरा बना चुकूं और फिर इसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब इसके लिए सजदे में गिर पड़ना। चुनाचे तमाम फरिश्तों ने, सब के सब ने सजदा कर लिया, लेकिन वो नहीं करता जिसको वाकई अल्लाह ताला तौफीक नहीं देता। दुआ कीजिए कहीं मैं ऐसी ना हो जाऊं कि शैतान की खमख्याल हो जाऊं। आयत 31-39 इबलीस की इंसान दुश्मनी। इल्ला इबलीस अबा अन यकूना मा साजिदीन, मगर इबलीस ने यानी इबलीस के सिवा सब ने सजदा किया कि इसने सजदा करने वालों में शमूलियत से साफ इनकार कर दिया। एक रिवॉर्ड के बारे में पढ़ रही थी कि उसने कहा कि जब मैंने पहली दफा सजदा किया तो मुझे उस दिन लगा कि मैं अल्लाह से बात कर रहा हूं। कहते मैंने अपनी सारी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो आज इस सजदे की आपको मुझे भी तौफीक है। अल्लाह दे सजदे वो नहीं करते जिनको इबलीसियत अच्छी लगती है। अल्लाह ताला आपको मुझे बेहतरीन तरीके से लेकर चले। वो कहते ना कि है ज़ौक़ तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तो निरा साहिब इदराक नहीं। यानी जब अल्लाह की मार्फत हो जाती है तो हजारों सजदे मचलते हैं मेरी जबीने न्यास में। तो अल्लाह हमें सजदों का शौकीन कर दे। अल्लाह ताला हमें इबलीसियत वाले फेल से बचा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया इबलीस तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। वो बोला कि मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। देखिए जाहिर परस्त ऐसे ही होते हैं। फरमाया अब तू बहिश्त से निकल जा क्योंकि तू रांदाए दरगाह है और तुझ पर मेरी फटकार है क़यामत के दिन तक। देखिए कैसा वो कहते ना कि बड़े रुस्वा होकर तेरे कूचे से हम निकले। लेकिन फिर भी देखिए इसने हिम्मत नहीं हारी। कहने लगा ऐ मेरे रब मुझे इस दिन की ढील दे, मुझे इस दिन तक की ढील दे कि लोग दोबारा उठा खड़े किए जाएं। फरमाया कि अच्छा तो इनमें से है जिन्हें मोहलत मिली है रोजे मुकर्रर के वक्त तक की। शैतान ने कहा ऐ मेरे रब चूंकि तूने मुझे गुमराह किया। नोट कीजिए कितना गुस्ताखाना अंदाज है इसका। मुझे भी कसम है मैं भी जमीन में इनके लिए गुनाहों यानी मासी को मुजयन यानी खूबसूरत कर दूंगा और इन सबको बहकाऊंगा। कुछ नहीं हुआ आपको? किस्सा आदम और इबलीस सूरत हिजर में पढ़ते हुए आपको इबलीस की दुश्मनी नहीं नजर आई? कितने प्यार से अपने बच्चों को शैतान कह देते हैं, हालांकि वो क्या कह रहे हैं कि मैं इनको बहकाऊंगा। तो अब देखिये क्या 26-39 तक इंसान की तख्लीक में फरिश्तों का आदम को सजदा करना, इबलीस का सजदे से इनकार करना, वजह तकब्बुर सरकशी और खुद पसंदी थी जिसका उसने मुजाहरा किया। अल्लाह ताला आज इंसानों में भी लोगों को कभी कभी ऐसे ही रवैयों का शिकार करते हैं। अल्लाह ताला हमें बचाए। अब आगे सवाल यह है कि हम कैसे बचें? जो इबलीस ने किया, जो शैतान ने किया, मैं अपने आप को उससे कैसे बचाऊं? तो उसका जवाब है आयत 40-42 में, लिख लीजिए, खालिस बंदे शैतान के काबू में नहीं आते। अखलास मुखलस जी अखलास की जैकेट पहनने वाले शैतान के चुंगल में नहीं आते। और यहां आप ये भी लिख सकते हैं कि इबलीस के नापाक अजाइम से अल्लाह किनको बचाता है? देखिएगा इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय तेरे इन बंदों के जो मुंतखब कर लिए गए। ये मुखलिस और मुखलस का फर्क हम 23वें पारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इरशाद हुआ कि हाँ यही मुझ तक पहुंचने की सीधी राह है। इरशाद हुआ कि हाँ यही मुझ तक पहुंचने की सीधी राह है। ये क्या है? यही लिख लीजिए इखलास, खालिस हो जाइए। अल्लाह को खोटे बंदे नहीं अच्छे लगते, दुनिया में आपको भी नहीं अच्छे लगते। किसी का आपको अंदाजा भी हो जाए ना कि दिल से वो खोटा है तो आप उसकी सोने जैसी चीज को पीछे कर देंगे। तो दिल से खोट खपट निकाल कर मुखलस बन जाइए, इंशाल्लाह शैतान आपसे कांपने लगेगा जैसे कि हजरत उमर फारूक को देखकर रास्ता बदल लेता था। मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं, अल्लाह ताला का ट्रस्ट देखिए आपके ऊपर। प्यार से अल्लाह कह रहे जो मुखलसीन है वो मेरे बंदे हैं, लेकिन हाँ जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करें तो फिर कर लें, फिर वो तो हैं ही गंदे। तो अल्लाह ताला आपको मुझे मुखलस बना दे। दुनिया की आरजी और घटिया लज्जतों को मुजयन कर देता है, अल्लाह हमें इससे निकालकर हयातन तैयबा की तरफ ले आए। सोच लीजिए जिंदगी पाक कब होगी? जब शैतान के चुंगल से निकलेंगे। आगे आयत नंबर 43-44 है, जहन्नुम के 7 दरवाजों का तस्करा भी है। शैतान उसे भटकाता है जो खुद भटकना चाहता है, इसका भी तस्करा है। आइए देखते हैं। व इन जहन्नम लमौइदुहुम अजमाइन, बेशक क्या है? व इन जहन्नम लमौइदुहुम अजमाइन, यकीनन हिंसाब के वादे की जगह जहन्नुम है, जिसके सात दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए इनका एक हिस्सा बना हुआ है। जी, ये सात दरवाजे कौन से हैं? इस पे हर दौर में ही बहुत सी गौर फिकर और गुफ्तगू की बातें हुई, तो इसकी मुख्तलिफ तफसीर उलमाए कराम करते हुए दिखते हैं, जिसमें से एक चीज तो यह है कि ये सात आमाल भी हैं, यानी सबवा अबवाब से सबवा असबाब सबब। और वो सात सबब कौन से हैं? जिसको सबल मोबिकात कहा गया, यानी कबायर। बहुत सारी रिवायतें आपको मिलती हैं, सात कबीरा गुना, जिसमें शिर्क भी है, कतर रहमी भी है, और कतल नाहक भी है, और बगी और जिना जैसे गुना है। बस ने इधर सात आजा भी मुराद लिए हैं, आंख कान जुबान पेट शर्मगा हाथ पांव, इससे है बात। और इसी तरह से जहन्नुम के सात दरवाजे भी मुराद लिए गए, जिसमें जहन्नुम जिसके लिए आता है कि आम गुनागारों के गुजरने की जगह, लजवा जिसके लिए यहूद का नाम आता है, खोतमा में ईसाइयों का नाम, साइर में साबी, सकर में मजूसी, और जहीम में मुशरकीन, और हाविया में हवा परस्त ख्वाहिश वाले। ये बहुत ही मारूफ तफसीर है अरबी की, तफसीर फतहुल कदीर, आप उसमें इसकी डिटेल खुद भी सुन सकते हैं। तो क्या पता चला कि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा हो हम में से कि जो इन चीजों का शिकार हो जाए। आज दुनिया में, आज खास तौर पे आप देखिए कि जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं और जहन्नुम के बंद हैं, बंद ही रहने दीजिए। ये ना कीजिए कि आपकी जिंदगी में ये दरवाजे खुल जाएं, इनमें से कोई एक काम जो आपको बता दिया गया और आप उसको करके शैतान के पीछे चले जाएं, क्योंकि शैतान खुद भी भटकता है और दूसरों को भी भटकाता है। आगे आए देखिए 45 से 50 आए, ईमान वालों के जन्नत में दाखिले की भी बातें, और अहले जन्नत की बाहम कदूरतें दूर कर दी जाएंगी। आज भी दो दीनदारों के बीच में भी अगर थोड़ी बहुत खोट खपट है तो अल्लाह ताला जन्नत में भेजने से पहले उसको दूर कर देंगे। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, परहेजगार जन्नती लोग बागों और चश्मों में होंगे। इनसे कहा जाएगा सलामती और अमन के साथ इसमें दाखिल हो जाओ। इनके दिलों में जो कुछ रंजिश और कीना था हम सब कुछ निकाल देंगे। वो भाई भाई बने हुए एक दूसरे के आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे, ना तो वहां इन्हें कोई तकलीफ छू सकती है और ना वो वहां से कभी निकाले जाएंगे। अल्लाह हमें ऐसे ही लोगों में कर दे, दुनिया में कदूरते निकाल दे, दुनिया भी जन्नत बन जाएगी। लिखिए हयातन तैयबा बनाने का एक नुस्खा आपके सामने, दिलों से कदूरत निकाल दे, बुगस एनिमिटी एनवी हसद जेलसी, उसका ऐसा मेरा ऐसा, उसको ये मिल गया मुझे ये मिला, दोस्तों की बातें सहेलियों की बातें सगे भाई बहनों के बीच में एक दूसरे का तकाबुल। तो शैतान किस तरीके से हमें एक दूसरों की नेमतों से जलना सिखाता है, तो नियत करते हैं कि अल्लाह हमारे दिलों को इन चीजों की बातों से बेनियाज कर दे। तो अल्लाह ने खबर भी बड़ी प्यारी दे दी आज 50:49 में, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबान हूं, और साथ ही मेरे अजाब भी निहायत दर्दनाक हैं। आप देखिए एक ही साथ गर्म और ठंडा इकट्ठा रख दिया, एक तरफ जन्नत की खुशखबरियां और दूसरी तरफ जहन्नुम की बातें। यही है कुरान का पढ़ने का अंदाज। याद रखिए हयातन तय्यबा बनाने के लिए अपने आप को इस असूल पे रखिएगा कि मैंने हर तरह की बात को समझना है। ये नहीं सोचना कि हाय मुझे डर लगता है, जन्नत की आयतों पे खुशी कीजिए और जहन्नुम की आयतों पे आपको जरा सा डरना तो चाहिए। तो ये जो आज का खौफ है ना कि हाय खौफ खौफ खौफ, तो कोई बात नहीं, डरेंगे तो तरेंगे। कहते हैं ना जो डर गया वो तर गया, और अल्लाह ताला आपको मुझे सच्ची तड़फ लगा दे कि हमने खौफ और उम्मीद के बीच में अपने ईमान को लेकर आना है। फिर इसके बाद आगे देखिए आयत नंबर 51 से 84 तक, अंबिया कराम की दावत पर चलने वाले ही बचे, किससे? शैतान के चुंगल से। और यहां आपको पता चलेगा कि अल्लाह रहम भी करता है और अल्लाह ताला अजाब भी करता है। उसकी सारी शानें, उसके सारे मामलात बहुत हैं, और इसी में आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे की पैदाइश की खुशखबरी भी दिखेगी साथ ही साथ, और कौम लूत की नाफरमान बीवी और सरकश कौम पर बदतरीन अजाब की खबरें भी मिलेंगी। व नब्बे हुमन दईफी इब्राहिम, इन्हें अम्बिया यानी इन्हें इब्राहिम के मेहमानों का हाल भी सुनाइए कि जब उन्होंने इनके पास आकर सलाम कहा तो उन्होंने कहा हमको तो तुमसे डर लगता है, देखिए सलाम करना फरिश्तों की आदत है, आप भी सलाम को आम कीजिए, अल्लाह ताला आपके अंदर अच्छी आदत डालने लगेंगे। उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तुझे एक साहिब इल्म फर्जंद बेटे की बिशारत देते हैं। कहा क्या, इस बुढ़ापे के आ जाने के बाद तुम मुझे खुशखबरी देते हो, ये खुशखबरी तुम कैसे दे रहे हो? यकीन नहीं आया अपने कानों पे, क्योंकि इंसान चाहे नबी क्यों ना हो उसको भी कुछ बातों पे हकीकत में यकीन नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन आपका मेरा ईमान है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, तो अल्लाह आज तक जिनको भी औलाद की नेमत से तूने दूर रखा, चाहे वो बुढ़ापे को पहुंच चुके, उनको नेक सालेहीन में से अता फरमा दे, जैसे कि तूने यहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी। फरिश्ते कहने लगे क्या? उन्होंने कहा हम आपको बिल्कुल सच्ची खुशखबरी सुनाते हैं, आप मायूस लोगों में शामिल ना हो। कहा अपने रब की रहमत से ना उम्मीद तो सिर्फ गुमराह और बहके हुए लोग ही होते हैं। पूछा कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों तुम्हारा ऐसा क्या अहम काम है? उन्होंने जवाब दिया हम मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं। क्या जुर्म था उनका? लिवातत, कौन सा खानदान है वो? मगर खानदान लूत के, हम इन सब को जरूर बचा लेंगे सिवाय इस लूत की बीवी के हमने इसे रुकने और बाकी रहने रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया। जब भेजे हुए फरिश्ते आले लूत के पास पहुंचे तो उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम यानी उन्होंने कहा कि तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, बल्कि हम तेरे पास वो चीज लाए हैं जिसमें ये लोग शक को शुबा कर रहे थे। हम तेरे पास सरी हक लाए हैं और हम हैं भी सच्चे, बिल्कुल सच्चे। अब तो अपने खानदान समेत इस रात के किसी हिस्से में चल दे और आप इनके पीछे रहना, और खबरदार तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी न देखे, और जहां का तुम्हें हुक्म किया जा रहा है वहां चले जाना। और हमने इसकी तरफ इस बात का फैसला कर दिया कि सुबह होते होते इन लोगों की जड़ें काट दी जाएंगी और शहर वाले खुशियां मनाते हुए आए। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा ये लोग मेरे मेहमान हैं, तुम मुझे रुसवा न करो, अल्लाह ताला से डरो और मुझे रुसवा न करो। वो बोले कि हमने तुझे दुनिया भर की जिम्मेदारी यानी ठेकेदारी से मना नहीं कर रखा, यानी हर एक का दर तुझे ही है, ये मुराद। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुम्हें करना ही है तो मेरी ये बच्चियां मौजूद हैं, तेरी उम्र की कसम वो तो अपनी बदमस्ती में सरगर्दां थे। पर सूरज निकलते निकलते ने एक बड़े जोर की आवाज ने आग पकड़ा, बिलाखर हमने इस शहर को ऊपर तले कर दिया यानी अपसाइड डाउन कर दी, छतें जो थी जमीन पे आ गई और जमीन या फर्श जो थे वो ऊपर आ गए, और इन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। बिलाशुबा बसीरत वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं, ये बस्ती ऐसी राह पर है जो बराबर चलती रहती है, मुराद के आम गुजरगाह यानी शाहराह है, हाईवे है, और इसमें ईमानदारों के लिए बड़ी निशानी है। एका बस्ती के रहने वाले भी बड़े जालिम थे जिनसे आखिर हमने इंतकाम ले ही लिया। ये दोनों शहर खुले आम रास्ते पर हैं यानी लोगों के रास्ते में आते हैं, और हिजर वालों ने भी रसूलों को झुटलाया और जिन्हें हमने अपनी निशानियां भी अता फरमाई, लेकिन ताहम वो इससे रूगरदानी ही करते रहे। ये लोग पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे बेखौफ होकर, आखिर इन्हें भी सुबह होते होते चिंगाड़ ने आ दबोचा, बस इनकी किसी तदबीर और अमल ने इनको कोई फायदा न दिया। एक से एक कौम कैसे बिगड़ती गई, कैसे कौमों पे अजाब आते गए, कौम लूत पे पत्थर बरसे, हम जिन्स परस्तों का यही अंजाम होता है, कैसे गुनाहों की बातें, आप देखिए सर पे पत्थर पड़ता और प्राइवेट पार्ट से इनके निकलता, यही है इस फेल का अमल। पहले सोच गंदी होती है, गंदी सोचें आती हैं, फिर आंखें गंद देखती हैं और फिर प्राइवेट पार्ट के थ्रू होता है। तो आज भी अल्लाह न करे कि पत्थर बरसने लगे ऐसे कामों पे, इन चीजों से आज बचाइए। लिखिए हयातन तैयबा के लिए जिन्स परस्ती से निकलना पड़ेगा, और जो एक दफा शुरू में शौक में या दोस्तों के कहने पे या फिर किसी बुरे गैंग या ग्रुप को ज्वाइन करने में पड़ जाते हैं, शुरू में एंजॉय करते हैं, बाद में मिजरेबल जिंदगियां उनकी। अल्लाह हमारे उन सारे भाई बहनों को ऐसी चीजों से निकाल दे जो ऐसी गंदगियों में पड़ चुके हैं, और फिर ऐसे लोगों के लिए फितरी तरीका नामुमकिन होता है, फिर घर बिगड़ते हैं, बीवी नाराज होती है और फिर पूरे मुआशरे में तबाही और बर्बादी आती है। वो कौम तो एक छोटी सी कौम थी, तबाह कर दी गई, आज अगर घरों घरों में ऐसी गंदगियां फैल गई तो हयातन तैयबा नहीं। नियत कीजिए, इरादा कीजिए, अगर आप खुद इसका शिकार हैं, अल्लाह ना करे तो कोई बात नहीं है, आपके लिए भी अल्लाह ने बहुत सारे रास्ते रखे हैं इससे निकलने के। फिर आगे हमने कौम शुएब का अंजाम देखा, उनकी हयात तैयब क्यों ना रही, इसलिए कि उन्होंने माल में नाफरमानियां डालनी शुरू कर दी। माल की मोहब्बत बाज दफा इंसान को नापाक माल को पाक माल में शामिल करने पर माइल करती है। अल्लाह ने उनको खंडरात में बदल दिया और करीब ही ये भी बस्ती थी दूसरी बस्ती के। और फिर आप देखिए कि कौम समूद का तस्करा है, अल्लाह ने उनको ऐसी टेक्नोलॉजी दी थी, बड़े आराम से पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे, लेकिन वो इन्हीं घरों में खो गए, निशाने और यादगारें कायम करने लग गए, रसूलों को छुटलाया, एक जलजले ने उनकी जिंदगी मिलिया मेट कर दी। तो क्या है हयातन तैयबा, डोंट ट्रस्ट ऑन योर टेक्नोलॉजी। कीमती घर, बड़े बड़े घर एक खसफ के साथ जमीन में गिरते, हमने भी 2-3 माह पहले नॉर्वे में अपने बिल्कुल 15 मिनट दूरी पर ये वाकया हुआ, ये कानों से सुना, आंखों से तो नहीं देखा, तस्वीरों में देखा। तो मत इन चीजों पे माइल बनो, ये आपकी जिंदगी को तबाही में बदल देगी। और अब आगे नबी से खिताब, सूरत का ततीमा शुरू होता है, जहां भी अंबिया कराम के किस्से आते हैं, फिर आखिरी रुकू आलमोस्ट नबी सल्लम से खिताब का होता है। आयत 85-86, मकसद कायनात है, मकसद हयात है, वमा खलकन समावाती वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक, हमने आसमान और जमीन को और इसके दरमियान की सब चीजों को हक के साथ पैदा फरमाया, और क्यामत जरूर जरूर आने वाली है, बस तू हुस्नो खूबी और अच्छाई से दरगुजर कर ले, यकीनन तेरा परवरदिगार ही पैदा करने वाला और जानने वाला। यानी इन्होंने जो आपकी जिंदगी अजीरन बनाने की कोशिश की है, तो अब आप इनको छोड़ दीजिए, इनके बारे में बिल्कुल ना सोचिए, बिल्कुल गम ना कीजिए। देखिए ये जो यदीक और सदरुख की बात है ना, तो याद रखिये कि नबी भी आखिर इंसान ही होते हैं। अपनी बेइज्जती करना किसी को अच्छा नहीं लगता। इंसान दौलत दे देता है, वक्त दे देता है, लेकिन इज्जत नहीं देता। तो लिखिए एक जुमला, जम है, हिदायत का पहला कदम अना पर पड़ता है, जो सबको मुश्किल लगता है, और बहुत सारे लोग उधर से ही पलट जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, वो कहते हैं कि अब हम आगे नहीं चलेंगे। आप एक दफा अपनी अना को कुचलवा लीजिए अल्लाह के दीन की तरफ आते हुए, आगे आपके लिए हयातन तैयबा फूलों का गुलदस्ता लेकर मुंतजर खड़ी है। दूसरी बात देखिए कि इन आयात में पीछे हमने किताब के टुकड़े करने की बात देखी है एवीन के लफ्ज के साथ। यहां भी एक जम लिखेगा कि किताब वाले जो सलूक किताब के साथ करते हैं, वही अल्लाह ताला उस कौम के साथ कर देता है। मसलन वो किताब को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, अल्लाह उस कौम को टुकड़ों टुकड़ों में डाल देते हैं। वो किताब को छोटे छोटे बुकलेट्स की सूरत में, छोटे छोटे किताबचों में डालकर पूरी किताब को पढ़ने से दूर हो जाते हैं, अल्लाह उस कौम को भी गिरोहों और फिरकों में बांट देता है। और जब अमली तौर पर किताब के अहकाम को पांव तले कुचलवा दिया जाता है, रौंदे जाते हैं अल्लाह के रसूल के और अल्लाह के अहकाम, तो अल्लाह ऐसी कौम को लोगों की नजरों में नीचा करके उनको भी जलीलो ख्वार कर देता है। पूरी किताब लीजिए, पूरी जिंदगी खूबसूरतियों वाली बनेगी, और अल्लाह सुबहान तला यही बात आपको मुझे सिखा रहे हैं। वलकद आतैना कसब मिनल मसानी वल कुरआन अल अजीम, आयत 87 बड़ी प्यारी आयत है, सूरत फातिहा की तफसीर में भी इसका तस्करा किया जाता है। कुरान की दौलत जिसको मिल जाए उसको और क्या चाहिए। आपके लिए ये सारी बातें, जिन्होंने आप दोनों हाथों से किताब को पकड़ने और थामने की ख्वाहिश की, और याद रखिए पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खसूसी खिताब, और आपकी दिलजोई के अंदर ये आयत आ रही है कि अल्लाह ने कायनात बामकसद पैदा की है। आज आप सब्र जमील करते हुए इनकी बातों को बर्दाश्त कर लीजिए, वो खालिक वो मालिक आपके सारे हालात को जानता है। और अब सूरत फातिहा की बात हो रही, यकीनन हमने आपको 7 आयतें दे रखी हैं कि वो दोहराई जाती हैं, और कुरान अजीम भी दे रखा है। इससे क्या पता चला कि सूरत फातिहा कुरान से अलग है, इसको मुसहफ में एक साथ हम रखते हैं। हजरत उमर कहा करते थे कि अगर मुझे डर ना हो कि लोग कहेंगे कि उमर ने कुरान में तब्दीली कर दी, तो मैं सूरत फातिहा को एक अलग रखूं और कुरान को आगे। यानी अल्लाह के नबी को 2 चीजें दी गईं, एक सहीफे की सूरत में सूरत फातिहा, और दूसरा कुरान पाक जो आपको मुझे मिलता है। और 7 बार बार क्यों दोहराई जा रही है, क्योंकि नमाज होती नहीं जब तक कि सूरत फातिहा ना पढ़ी जाए। अब आगे आपको मुझे खिताब है, जो वाकई इतने कमेंट्स देते हैं और दिन रात एक्टिविटीज देते हैं, हर रोज फोन की मेमोरी स्टक हो जाती है, 256 GB न जाने किधर गए, जिस दिन से दौरे कुरान शुरू हुआ हर दूसरे दिन मेरा फोन स्टक है और सिर्फ दो चार ग्रुप्स में हूँ जहाँ आपकी एक्टिविटी शेयर की जाती है। अल्लाह मस्जिद न बला तन कुछ न वक्रीम न बला तो हिन्ना, मुझे इतराज नहीं है कोई, मैं अपने फोन को खाली कर लूंगी, लेकिन आप एक्टिव होकर ये एक्टिविटीज भेजते रहिए कि ये कुरान क्या बहारें आपके दिल पे बरसाता है। और आपको अल्लाह ताला एक मशवरा दे रहे हैं आपके मेरे दोनों के लिए है, देखिएगा आयत 88 से 90, ईमान इंसान में नरमी लाता है और जब कुरान की दौलत मिल जाए तो दुनिया की चीजों की तरफ नजर भर के न देखो। क्यों? ला तमुद्दन नाई नहीं कई ला मा मतवाना बिही अज़वाजा। आप हरगिज अपनी नजरें इस चीज की तरफ मत दौड़ाइए जिससे हमने इनमें से कई लोग किस्म के लोगों को बहरा मन कर रखा है, यानी दूसरों को जो नेमते हैं या दौलत की चीजें दी हैं, आप उसकी तरफ नजर भर के ना देखें, ना इन पर आप अफसोस करें और मोमिनों के लिए अपने बाजू झुकाए रखें और कह दीजिए कि मैं तो खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूं, जैसे कि हमने इन तकसीम करने वालों पर उतारा है। क्या पता चला कि जब कुरान आपके हाथ में है, जब कुरान आपकी जिंदगी में है, तो आप कोई कॉम्प्लेक्स अपने अंदर न रखिए। औलाद नहीं तो ना सही, माल नहीं तो ना सही, आपके गुमान में आपकी शक्लो सूरत अच्छी नहीं तो ना सही, ना अपने बहन भाइयों से अपने आप को टैली कीजिए, ना दोस्तों से अपने आप को कंपेयर कीजिए, और आप इस किताब में अपने आप को खपा दें। जिंदगी के हर डिप्रेशन से निकालने वाली ये आयत है, लिखिए हयातन तैयबा। आज आपको डिप्रेशन फ्री जिंदगी का राज मिल रहा है इस पारे के अंदर, बल्कि इसका नाम ही हयातन तैयबा को अपने लिए लिख लीजिए, डिप्रेशन फ्री जिंदगी। तो आज के हालात से आपको बहुत मैच करेगा, क्योंकि आज के दो ही बड़े नाम है स्ट्रेस और डिप्रेशन। सब कुछ होते हुए खुश नहीं है, घर बड़े हैं तो दिल तंग है और औलाद है तो खुशी नहीं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन सब को छोड़ दो। ये नशुक्री होगी अगर आपको अल्लाह ने कुरान दिया और आप छोड़कर आप पैसे कमाने जा रही हैं, या आपकी नशुक्री है कि अल्लाह ने आपको कुरान की समझ बूझ दी और आप घर में आराम फरमा रही हैं, या आपकी कुरान की नाकदरी होगी कि आप अपने घर बच्चों दावतों शादियों के नाम लेकर इस किताब को छोड़े। ये बड़ी डांट भी है इसमें, मेरे लिए भी है, मैं आपको कुरान पढ़ा रही हूँ, इससे बड़ा ऑनर मुझे कोई क्या जिंदगी में देता। छुरछुरी आ जाती है इंसान को, खौफ आने लगता है कि अल्लाह इसका हक अदा कराना, मैं इसको छोड़कर क्या करूं, मासी बन जाऊं, घरों में काम कर लूं मैं। आप देखिए कि एक बादशाह की गुलामी हो और एक नौकर की गुलामी हो, बादशाह का गुलाम अच्छा है कि नौकर का गुलाम अच्छा है? कौन है जो किसी 19 ग्रेड की अफसरी से उठकर क्लर्की पे आना चाहे? लिखिए आज अगर कुरान आपको समझ आ गया, आपकी जिंदगी में ये कुरान आ गया, अब इसको छोड़कर आपको 50,000 करोन महीने की जॉब ऑफर हो जाए, अल्लाह कहते वला तमुद्दना नहीं, लात मारो, एक लात मार के देखो फिर तुम्हें दौलत मिलती कहां से। ये नहीं कि भूखे मरोगे, शुरू में सुन चुके हैं, इतना माल परवाही कोई नहीं, गिनने की फुर्सत नहीं, हिसाब लगाने का वक्त नहीं, क्योंकि जिंदगी से ख्वाहिशें छोटी, मकासद आपके जलील, नजरे आपकी दुनिया पे, आप ये कपड़े जूते चीजों में क्या, और जिसने इन चीजों से अपने आप को पीछे किया आज भी यहां रहकर थोड़े पैसों में गुजारा हो सकता है, और जब आपकी सोच अच्छी होगी आपके बच्चों की भी अच्छी हो जाएगी तो बच्चे भी माँ बाप ही के नक्शे कदम पे चलते हैं। आइए सुनिए जरा इसके बरक्स वो लोग जिन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आयत 91 से 96, जिन्होंने इस किताब इलाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कसम है तेरे पालने वाले की हम इन सब से जरूर बासपुरस करेंगे हर चीज की जो वो करते थे, बस आप इस हुक्म को जो आपको किया जा रहा है खोल कर सुना दीजिए और मुशरिकों से मुंह फेर लीजिए। आपसे जो लोग मस्खरापन करते इनकी सजा के लिए हम काफी हैं, जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूद करार देते हैं इनको अनकरीब मालूम हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह सुब्हानहु तआला हमें तौफीक दे कि हम इस किताब को पूरे का पूरा ले सकें। और आगे देखिएगा आयत 97 से 99, बिल्कुल आखिरी नसीहतें हैं, सारी आयतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरफ जाती हैं। लिखिए आयत 97 से 99, टॉपिक है अल्लाह की तस्दीक करें। वलकद नालमु अन्नक यदीकु सद्रुक बिमा यकुलून, हमें खूब इल्म है कि इनकी बातों से आपका दिल तंग होता है, आप अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्द बयान करते रहें और सजदा करने वालों में शामिल हो जाएं और अपने रब की इबादत करते रहें यहां तक कि आपको मौत आ जाए। जिंदगी भर का सफर है ये, پہلے تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے کیا الفاظ استعمال کیے، اور آج نہ جانے کیوں نہ سمجھی میں ہمارے کچھ بھائی بہن ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ایسا لفظ بولنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے، تو قرآن نے تو ایک سے زائد ایسی بات کی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ علم کی کمی ہے. کیا سیکھا ہم نے سورۃ الحجر سے کہ اپنی زندگی کو حیات طیب بنانے کے لیے ہم سب کو اپنے آپ کو خالص کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا. آگے خوبصورت آیت جو ہے اس سورت کے ختم ہونے کے بعد سورت نحل شروع ہو رہی ہے، ترتیب کے اعتبار سے 16 نمبر سورہ، اور پوری اینڈ تک ہم پڑھیں گے جو کہ 128 آیتیں ہیں. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، کیوں بھائی؟ ایک مکھی بی بی آپ کا نام قرآن میں کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ وَمْ مَمَا يَنْفَوْ النَّاسُ فَيَمْكُسْ، جو لوگوں کو نفع دے گا اسی کو اللہ بچائے گا. تو نحل شہد دیتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ادھر پیغام دے رہا ہے ایک خاموش الفاظ میں کہ اگر آپ حیات طیب گزار کے دنیا سے جائیں گے، بامقصد زندگی گزاریں گے اور لوگوں کے نفع کے بن کے جائیں گے، تو اللہ آپ کا تذکرہ بھی آپ کے بعد رکھے گا. ذرا سا ہم اس سورت کے ناطے سے دیکھ لیتے ہیں سورت نحل کی آیات کا تجزیہ. یاد رکھیے سورت کا ایک اور نام ہے سورت النعم، نعمتوں والی سورت. اور ہر سال جملہ بولتی ہوں کہ ٹرین میں بیٹھے ہوا شخص کو باہر مختلف منظر جو دکھتے ہیں، یہ سورت بالکل اسی قسم کی منظر کشی کرتی ہوئی دکھتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ سورت نحل میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی 18 آیات جو ہیں اللہ کی قدرتیں اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہے اس میں. پھر 19 سے لے کر 64 آیات میں مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش ہے، اور آیت نمبر 65 سے 83 میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور اس کی نعمتیں ہیں. 65 سے 83، پھر 84 سے 89 میں ایمان بالآخرہ کا تذکرہ ہے. آیت 90 سے 100 اہم ہدایات ربانی ہیں. آیت 101 سے 113 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش ہے. 114 سے 119 حلال اور حرام کی بحث ہے. اور آیت 120 سے 124 آیت میں کیا ہے؟ عظمت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور آیت 125 سے 128 صبر و استقامت کی تلقین ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک سورت میں اتنا کچھ، اور آپ کا چھوٹا سا ذہن، چھوٹا سا دماغ، چھوٹی سی باتیں. اس ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر کہیے کہ واللہ ما لا ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ بشر کا کلام نہیں ہے. آپ نے میں نے ان ساری چیزوں کو پڑھتے وقت سوچنا بھی ہے اور دعا بھی کرنی ہے کہ اے مالک تو ہمیں ان سارے مضامین پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آئیے شروع کرتے ہیں ٹیکسٹ کے ساتھ سورت نحل کو، اور جس مضمون پہ سورت الحجر ختم ہوئی بھی کیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اور یہاں کیا ہے؟ اَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ کا امر آیت 1 سے 3 آپ کے سامنے ہے، مشرکین مکہ کے لیے ایک دو ٹوک اعلان ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ پہنچا، آپ اس کی جلدی نہ مچاؤ. تمہاری پاکی اس لیے ہے کہ وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں. وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، اور تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی اور معبود نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو. اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور وہ اس سے بری ہے جو یہ مشرکین کرتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ ایک وارننگ ہے اس میں، اس بات کی وارننگ ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات کو نہ مانیں، جو اپنے وقت کے نبی کو نہ مان سکیں، پھر ان کی زندگی کیسی ہوگی، وہ کیا کریں گے. ان ساری چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں لے کر ایک دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے ذریعے سے دنیا سے کفر اور شرک کے اندھیروں کو مٹا دے. آگے آیت نمبر 4 سے 16 کائنات کی خوبصورتیاں بھی ہیں और साथ ही साथ गौर व फिक्र की दावत भी है। अल्लाह की तखलीक के तीन बड़े शाहकार आप पढ़ेंगे आयत 3-4 में। खलक अल इंसान मिन नुतफतिन फइज़ा हुआ खसीमुम मुबीन, इसने इंसान को नुतफे से पैदा किया, फिर वो सरीख झगड़ालू बन बैठा। इसी ने चौपाए पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास हैं और बहुत से नफे भी हैं और बास तुम्हारे खाने के काम आते हैं, और इनमें तुम्हारी रौनक भी है जब चरा कर लाओ तुम भी तब भी और जब चराने ले जाओ तब भी, और वो तुम्हारे बोझ इन शहरों तक उठाए जाते हैं जहां तुम आदि जान किए बगैर पहुंच ही नहीं सकते, यानी अगर पैदल जाते तो तुम अधमुए हो जाते। यकीनन तुम्हारा रब बड़ा ही शफीक और मेहरबान है। क्या पता चला कि तुम्हारा रब शरी मेहरबान है तो तुम भी मेहरबानी रखो अपने अंदर, इस चीज को पैदा करो और इस चीज को लेकर चलो। फिर इसके बाद फरमाया, घोड़ों को खच्चरों को गधों को इसने पैदा किया कि तुम इनकी सवारी लो, और वो बायसे जीनत भी हैं। वो और भी ऐसी बहुत सी चीजें पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। आप देखिए कि कैसे अल्लाह ताला ने छोटी छोटी मखलूकात का तज़किरा इधर करके आपको मुझे बता दिया कि नहीं कोई भी चीज नकम्मी इस जहां में, इस जमाने में। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की बात की एक पानी की बूंद से, लेकिन इंसान अपने आप को जब भूल जाता है तो अल्लाह ताला उसको कैसे ये सारी चीजें देता है। खासतौर पर आप देखिये चौपायों का तज़किरा, कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने उनकी खाल इंसान के लिए सर्दी गर्मी के लिए फायदे की रखी। फिर आप देखिए हलाल चीजें, गोश्त, चर्बी, हड्डी, खाद, क्या क्या इन छोटी छोटी चीजों से नहीं है। तो एक इंसान जिसको अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, क्या वो लोगों को फायदा नहीं देगा? दुआ भी कीजिए और नेमत का शुक्र करते हुए कहिए कि अल्लाह ऐसी पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाला बना कि अपने जाने से पहले दुनिया में लोगों को हम खैर और बरकत दे सकें। आगे आयत 9 में फरमाया, और अल्लाह पर सीधी राह का बता देना है और बास टेढ़ी राहें हैं, और अगर वो चाहता तो तुम सबको राह रास्त पर लगा देता। दुआ कीजिए अल्लाह हमें तो सारे राह रास्त पे लगा दे। और आयत 9 पे ये फ्लो चार्ट आपके सामने है, वाल्लाही कसदुस सबीली व मिन हाजायर, सिराते मुस्तकीम की राह हिदायत है, हिदायत पर जिसकी जिद्दोजहद मकबूल हो जाए वही मोमिन है। दुआ कीजिए अल्लाह हमारी टूटी फूटी कोशिशों को कबूल कर ले। हिदायत याफ्ता लोग ही सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहते हैं, अल्लाह हमें ऐसे ही लोगों में रखे। सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने एक चौकटा खेंचा, यानी एक चकोर सा खाना सा बनाया, चार खानों वाला, चार दीवारें उसकी, फिर इसके दरमियान एक खत खेंचा जो चौकटे के दरमियान में था, इसके बाद दरमियान वाले खत के इस हिस्से में जो चौकटे के दरमियान में था छोटे छोटे बहुत से खतूत खेंचे, और फिर फरमाया कि ये इंसान है और ये इसकी मौत है जिसे घेरे हुए है, और ये जो बीच का खत बाहर निकला हुआ ना वो इसकी उम्मीद है, और छोटे छोटे खतूत इसकी दुनियावी मुश्किलात हैं। बस इंसान जब एक मुश्किल से बचकर निकलता है तो दूसरी में फंस जाता है, और दूसरी से निकलता है तो तीसरी में फंस जाता है। तो अपनी ख्वाहिशों को कम करना है। फिर आप देखिए कि आयत 9 पे एक फ्लो चार्ट है आपके सामने, हिदायत का तोहफा सिर्फ इनके लिए जो हक को पहचान कर इस पर यकीन रखने वाले और अमल करने वाले हैं। तो हिदायत की साइट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। मैंने हक को पहचान लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैंने इसके ऊपर अमल करना है, गौर व फिक्र करना है। और शिर्क से बचने वालों और तौहीद पर कायम रहने वालों के लिए भी हिदायत है, शर्त एक है कि थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए इंसान तैयार हो जाए, और जो मोहब्बतें अल्लाह ने इंसानों की सूरत में दी हैं उन मोहब्बतों को अपने रास्ते की रुकावट इंसान न बनाए, और फिर इसी तरह से तागूत से इज्तनाब करने वालों के लिए भी हिदायत है। अल्लाह ताला हर किस्म के तागूत से बचने बचाने वाला हमें बना दे। आगे आयत नंबर 10 में फरमाया, वही तुम्हारे फायदे के लिए आसमान से पानी बरसाता है जिसे तुम भी पीते हो, और इसी से उगे हुए दरख्तों से तुम अपने जानवरों को चराते हो, इसी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। आप और मैं गौर व फिक्र करें जरा, थोड़ा सा देखिए इन चीजों के ऊपर हम गौर करते हैं। हम चारों तरफ अपनी नेमतों में जकड़े होते हैं, इन चीजों को देखते हैं लेकिन गौर नहीं करते। आप देखिए कि इन आयात में पानी की तीन बरकतें बयान की गई। एक तो पानी इंसानों की प्यास बुझाता है, और उसकी कई जिस्मानी जरूरियात को पूरा करता है। फिर पानी के जरिए वो चारा, घास और पत्ते पैदा होते हैं जो जानवरों के लिए खुराक बनते हैं। फिर इसी तरह पानी के जरिए तरह तरह की खेतियां, जैतून, खजूरें, अंगूर, कई किस्म के फल और मेवे पैदा होते हैं। क्या इन सारी चीजों को पढ़ने और सुनने के बाद इंसान को अपना फहम नहीं लगता? आप देखिए कि एक मर्द घर बनाकर बीवी को कहता है, बेगम ये सब आपके लिए है, तो बेगम कितनी खुशी महसूस करती है। अल्लाह ताला ने तो हमें इसे बहुत ज्यादा दिया और हम इन सारी चीजों को लेने की बजाय अगर नाशुक्रियों के रवैये अख्तियार कर लेते हैं तो क्या करें? और अपने आप को इस चीज के साथ लेकर अगर आप और मैं लेकर जाएंगे तो इंशाल्लाह महसूस करेंगे इस चीज को आप भी और मैं भी कि अल्लाह ताला हमें इससे फायदा उठाने वाला बना दे। इसीलिए फरमाया आयत नंबर 12, इसी ने रात और दिन और सूरज चांद को तुम्हारे लिए ताबे कर दिया और सितारे भी इसी के हुक्म के मातहत हैं। यकीनन इसमें अक्लमंद लोगों के लिए कई एक निशानियां मौजूद हैं और भी बहुत सी चीजें तरह तरह के रंग रूप की इसने तुम्हारे लिए जमीन पर फैला रखी हैं। बेशक नसीहत कबूल करने वालों के लिए इसमें बड़ी भारी निशानी है और दरिया भी इसने तुम्हारे बस में कर दिए हैं कि तुम इसमें से निकला हुआ ताजा गोश्त खाओ और इसमें से अपने पहनने के जेवरात निकाल सको। और तुम देखते हो कि कश्तियां इसमें पानी चीरती हुई चलती हैं और इसलिए भी कि तुम इसका फजल तलाश करो और हो सकता है कि तुम शुक्रगुजारी करो। अल्लाह हमें शुक्रगुजार बना दे इस सारी नेमतों पे। और इसने जमीन में पहाड़ गाड़ दिए ताकि तुम्हें हिला न दे और नहरें और राहें बना दी ताकि तुम मंजिले मकसूद को पहुंचो। क्या मंजिल होती है मोमिन वाले की, सोचिए। अल्लाह अकबर कबीरा, जन्नत और दुनिया में कामयाबी, अल्लाह की राजी। आपको मुझे अल्लाह ताला ने मौका दे दिया इस वक्त गौर फिक्र का, थोड़ा सा गौर कीजिए। और बहुत सी निशानियां मुकर्रर फरमाई और सितारों से भी लोग राह हासिल करते हैं। मैं तो इन सारी आयतों को पढ़ते वक्त एक ही बात कहूंगी, जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। सारा जहां तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। आप देखिए कि नायात में अल्लाह ताला ने कुदरत के पांच मज़ाहिर बयान किए हैं जो सब के सब इंसान की खिदमत के लिए हैं। रात आराम के लिए है, दिन भाग दौड़ और कामकाज के लिए है, सूरज रोशनी, हरारत, तवानाई की फराहमी। और इसी तरह से आप देखिए कि दिन और रात का हिसाब लगाने और दीगर कई किस्म की खिदमात को बजा लाने का जरिया। चांद रात में रोशनी और महीनों का हिसाब फराहम करता है, सितारे सिमतों का तयन करते हैं। बेशक अल्लाह ने ये जहान इंसानों के लिए बनाया, इसलिए इंसान को शुक्र करना चाहिए। फिर आप देखिए कायनात की जीनत और रंगारंगी की बात हुई, तो ये कायनात अगर ब्लैक एंड व्हाइट होती तो कैसी लगती? खूबसूरती है इसमें, क्या कुछ अल्लाह ताला ने रखा। वो किसी ने कहा ना कि गुल है रंगो रंग से रौनके चमन, ए जौक इस जहां को है जेबे इख्तलाफ से। तो कायनात में जो खूबसूरती है, डाइवर्सिटी है ना, यही आपको मुझे सब कुछ दिखाती है। फिर आप देखिए कि हमने इन पिछली आयात में समंदर की बरकत भी देखी, कितनी थी जरा सा नोट कर लीजिए। समंदरों से हासिल होने वाली बरकत में मछलियां हैं, ताजा और सेहत बख्श गोश्त की बात हो गई, फिर मोती और गूंगे पैदा होते हैं जिसको इंसान जेवरात के तौर पर इस्तेमाल करता है, फिर समंदरों में कश्तियां और जहाज चलते हैं जिनसे फिर बड़े पैमाने पर तिजारती सरगर्मियां होती हैं, और फिर आज 15 से 16 में आपने मज़ाहिरे कुदरत देखे हैं जमीन के, जिसमें सबसे बड़ी चीज पहाड़ है, नहरें हैं, ज़रात के लिए पानी मिलता है, कुदरती रास्ते हैं। ये सारा कुछ जो सफर के दौरान आपको मुझे दिखता है, अल्लाह ताला कहता है कि इन सब को देखकर अब क्या करो। आयत 17 से 24 टॉपिक लिखिए, खालिक और मखलूक बराबर नहीं हो सकते। यानी ये सारा जहान का खजाना, कारखाना कुदरत देखो और इसके बाद फिर इस बात का यकीन रखो कि तुम्हारा रब इन सारी चीजों पे कादिर है। तुम्हारे रब ने ये सब कुछ तुम्हें दिखाने के लिए बनाया, तो लिहाजा अफमई यखलुकु कमल ला यखलुक अफला तज़क्करून, तो क्या वो जो पैदा करता है इस जैसा है जो पैदा नहीं कर सकता? क्या तुम बिल्कुल भी नहीं सोचते? और अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो तुम नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। जो कुछ तुम छुपाओ और जाहिर करो अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। और जिन जिन को ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, इमेजिन कीजिए जरा इस जुमले को, बल्कि वो खुद पैदा किए जाते हैं, बल्कि वो खुद पैदा किए हुए हैं, मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, बल्कि इन्हें तो ये शऊर तक नहीं कि कब उठाए जाएंगे। वो तुम सब का माबूत है, सिर्फ अल्लाह अकेला। और आखरत पर ईमान न रखने वालों के दिल मुनकर हैं और वो खुद तकब्बुर से भरे हुए हैं। इस कायनात में तकब्बुर की कोई जगह नहीं। तो यहाँ देखिए आयत 22 में अल-क़ल्बुल मुनकर और मुस्तकबिर, अल-क़ल्बुल मुस्तकबिर। जब दिल में अपनी बड़ाई आती है, इनकार आता है, तो इंसान फिर अल्लाह ताला के मामले में भी तकब्बुर करने लगता है। क्या होता है ये दिल, क्या है इसकी कैफियत? तो याद रखिए कि आखरत के इनकार से दिल मुर्दा हो जाते हैं और हक का मुनकर होने की वजह से तकब्बुर आ जाता है। अल्लाह ताला आपके मेरे दिल को तकब्बुर वाला या मुनकर दिल बनने से बचा दे। फिर आयत 22 में अल-क़ल्बुल मुनकर देखिए, अल्लाह की इबादत से गुरूर करने वाले, कबूल हक से तकब्बुर करने वाले और अल्लाह की नेमतों का इनकार करने वाले। अल्लाह ताला आपको मुझे ऐसे लोगों में ना करे। और आपने देखा है तो 18:19 में वाइन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतें गिनना भी चाहो तो तुम गिन नहीं सकते। तो बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमतिल कुरान। इसलिए आगे पैगाम है कि अपने जैसे इंसानों को माबूद न बनाओ। इस कायनात में शिर्क की कोई जगह नहीं। फरमाए बेशक अल्लाह ताला हर इस चीज को जिसे ये लोग छुपाते हैं और जिसे जाहिर करते हैं बखूबी जानता है। वो गरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और जब इनसे दरियाफ्त किया जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल किया है, तो जवाब देते हैं कि अगलों की कहानियां, यानी तासुब वाले दिल, गंदे दिल, इनकारी दिल। तो ऐसे लोगों के साथ कल क्या होगा? इसका जवाब आयत 25 से 27 में देख लीजिएगा। अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा। लियाहमिला उजारहुम कामिलतन कामिलतैन यौमल क़ियामा, लियाहमिला उजारहुम कामिलतैन यौमल क़ियामा। इसका नतीजा होगा कि क़यामत के दिन ये लोग अपने बोझ के साथ और बोझ भी उठाए खड़े होंगे और फिर इनके हिस्सेदार भी होंगे जिन्हें बेइल्मी में गुमराह करते रहे। देखो तो कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं। जरा सा रुकिए, आज कहीं आप दुनिया में किसी गुनाह का जरिया तो नहीं बन रहे? कहीं आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज तो नहीं आई हुई कि आप सिर्फ पैसे की खातिर, फन की खातिर, शौक की खातिर दूसरों के भी गुनाहों को अपने कंधों पे उठाए हुए? तो दुआ कर लीजिए कि अल्लाह मुझे इसे निकाल दे, मैं इससे निकलना चाहती हूँ और चाहता हूँ, ताकि क़यामत के दिन दूसरों के गुनाहों के बोझ भी मेरे ऊपर न आ जाएं। इसलिए फरमाया इनसे पहले के लोगों ने भी मकर किया था, आखिर अल्लाह ने इनके मंसूबों की इमारत को जड़ों से उखेड़ दिया और इनके सरों पर इनकी छतें ऊपर से गिर पड़ी और इनके पास अज़ाब वहां से आ गया जहां कहीं ने वहमो गुमान भी न था। फिर क़यामत वाले दिन भी अल्लाह ताला इन्हें रुसवा करेगा और फरमाएगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम लड़ते झगड़ते थे। जिन्हें इल्म दिया जाएगा, यानी जिनको इल्म दिया गया, नोट कीजिए यहाँ इल्म वालों की शान, जिनको इल्म दिया गया था वो पुकार उठेंगे। क्या पुकार उठेंगे? कि आज तो काफिरों को रुसवाई और बुराई चिमट गई, तो आज इल्म ले लीजिए ताकि कल क़यामत के दिन के की हसरत से बचने से इंसान बच जाए और अपने आप को इन चीजों का ईंधन न बना दे। अब देखिए आज दुनिया में कितना मुश्किल लगता है हम सबको इन चीजों को सुनना, समझना, और खास तौर पे मेरी हमदर्दियां उन लोगों के साथ के जो शुरू से ही इन चीजों में पड़ गए और फिर उनको हकीकत में नहीं पता चला। देखिए कि अल्लाह ने तो हुज्जतें तमाम की होती है, लेकिन याद रखिए कि हर बंदे की एक आजमाइश तो होती है ना। अगर अल्लाह ने आपको किसी बेदीन घराने में या गैर मुस्लिम घराने में पैदा कर दिया तो कोई बात नहीं, आपसे अल्लाह ताला बड़ी बातें नहीं पूछेगा। बल्कि आप जानते हैं कि जो लोग बाद में शामिल होते हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको कैसे मुख्तलिफ तरीके से कंपनसेट करते हैं, उनके हर अजर को दुगना बना देते हैं। आगे आयत 28 से 31 देखिए, अल्लज़ीन ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, पैगाम है इसमें कि जिंदगी से फायदा उठा लीजिए, चार दिन की जिंदगी है, आज इसको जाया ना कीजिए, वरना मौत का फरिश्ता जब आएगा तो क्या होगा। वो जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, फरिश्ते इनकी जान कब्ज करने लगते हैं, इस वक्त वो झुक जाते हैं यानी सरेंडर कर देते हैं, उस वक्त हैंड्स अप कर देते हैं और बिल्कुल अपने आप को पीछे करते हैं कि हम बहुत ही कसूरवार थे, क्या कहते हैं कि हम बुराई नहीं करते थे, क्यों नहीं, अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम करते थे, बस अब तो हमेशगी के तौर पर तुम जहन्नुम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, बस क्या ही बुरा ठिकाना है गरूर करने वालों का। अब देखिए जिंदगी का गुनाह वहां जाके सामने आएगा, पता क्या चला कि गुमराही फैलाना गुनाह जारिया है, और ऐसा शख्स फिर अपनी मौत के वक्त और अपने आखिरी अंजाम के वक्त बहुत ही परेशान होगा। इसके बरक्स और परहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल फरमाया है, तो जवाब देते हैं कि अच्छे से अच्छा, ये आपके दिलों की बातें हयातन तैयबा। आपसे लोग पूछते होंगे आज के पारे में क्या पढ़ा, आप कहते हैं बहुत अच्छा, यानी बस बस जुबान गुंग हो जाती है ना, समझ ही नहीं आती क्या बोले, तो अल्लाह ताला ने यहां ये बात की। और ये जो पिछली आए थे ना, तो इधर लिख लीजिए कि कब्र जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है, क्योंकि नाफरमानों की कब्र का तस्करा था, मौत के वक्त का तस्करा था, और अब यहां जन्नत की बात है, सबसे बड़ी खैर अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद की सूरत में है। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं कि खैर ही तो खैर थी, कैसे कि अल्लाह ने तो बहुत ही प्यारी चीज नाजिल कर दी, जिन लोगों ने भलाई की इनके लिए दुनिया में भलाई है, और यकीनन आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है, क्या ही खूब परहेजगारों का घर है, हमेशगी वाले बागात जहां वो हमेशा रहेंगे, या जहां वो जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, या जो कुछ उसमें तलब करेंगे वहां इनके लिए मौजूद होगा। परहेजगारों को अल्लाह ताला इसी तरह बदले अता फरमाता। और आगे आए 32 लिखिए, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, और आगे फरिश्तों के सलाम भी मिलेंगे, अल्लज़ीना ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन, वो जिनकी जाने फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो पाक साफ हों, कहते हैं तुम्हारे लिए सलामती ही सलामती है, जाओ जन्नत में अपने नामाल के बदले में जो तुम किया करते थे। कब्र में ही जन्नत की खिड़की खुल जाती है और खुशखबरियां सुनाई दी जाती हैं, अल्लाह हमारी भी कब्रों को जन्नत के टुकड़े बना दे, और अल्लाह हमें इसकी आज तड़प लगा दे। आगे 33 से 35, बुरे बदले हैं, हल यंजुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, क्या ये इसी बात का इंतजार करें कि इनके पास फरिश्ते आ जाएं या तेरे रब का हुक्म आ जाए, ऐसा ही इन लोगों ने भी किया था जो इनसे पहले थे, इन पर अल्लाह ताला ने कोई जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे, बस इनके बुरे अमाल के बदले इनको मिल गए, और जिसकी हंसी ये उड़ाते थे इसने इनको घेर लिया। मुश्रिक लोगों ने कहा, अगर अल्लाह चाहता तो हम और हमारे बाप दादा इसके सिवा किसी और की इबादत ही ना करते, न इसके फरमान के बगैर किसी चीज को हराम करते, यही फेल इनसे पहले लोगों का रहा, तो रसूलों पर तो सिर्फ खुल्लम खुल्ला पैगाम पहुंचा देना है। आपको भी मुझे भी यही पैगाम दिया जा रहा है, पैगाम पहुंचा दीजिए, उसके बाद दुआ कर दीजिए। देखिए अगर तो दिल नहीं खुल रहा तो कोई बात नहीं, फिर अल्लाह से और वक्त मांग लें, लेकिन अगर किसी का दिल खुल गया इन सारी आयात को सुनकर, तो फिर मोहलत मांगने की बजाय अल्लाह से दुआ करने की जरूरत है कि अल्लाह कहीं क़यामत के दिन ऐसा मामला ना मेरे साथ हो जाए कि मैं हसरत का शिकार हो जाऊं और अपने आप को परेशान हाल लोगों में देखूं। आगे आए 36 से 39 में अल्लाह सुबहान तआला तागूत से बचने की बात करते हैं कि कैसे तागूत रास्तों में आते हैं जब इंसान अल्लाह का बनना चाहता है। वलकद बस नफी कुल्ली उम्मत रसूलना ने बुदुल्लाह, हमने हर उम्मत में रसूल भेजे ताकि कहे, क्या कहा हर रसूल ने, लोगो सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तमाम माबूदों से बचो, बस बास लोगों को तो अल्लाह ने हिदायत दी और बास पर गुमराही साबित हो गई, बस तुम खुद जमीन में चल फिर कर देख लो झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ, वो आप इनकी हिदायत के ख्वाहिशमंद रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला इसे हिदायत नहीं देता जिसे गुमराह कर दे, और न कोई इनका मददगार होता है। क्या पता चला, आयत 36 में हिदायत अल्लाह ताला का तोहफा है, सिर्फ उनको मिलेगा जो इसकी कोशिश करेंगे। और अल्लाह हमें हिदायत की कोशिश करने वाले गिरोह में शामिल फरमा दे, और जिसकी दलील अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप लोग दे रहे हैं इस कुरान को सुनकर। आगे फरमाया 38, वो लोग बड़ी सख्त कसमें खा खा कर कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुर्दों को अल्लाह जिंदा न करेगा। जवाब क्या है, क्यों नहीं, जरूर जिंदा करेगा, ये इसका बरहक लाजमी वादा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अब देखते हैं, हर दौर में लोगों को ये चीज माननी बहुत मुश्किल लगी कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, और रसूलों की दावत ये थी कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बगावत करो, लेकिन इस रास्ते में हकीकत में रुकावट इंसान का अपना नफ्स होता है। इसीलिए आप देखिए कि अल्लाह ताला आयत 38 में और आगे जाकर क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह झूठों को घर तक पहुंचाएगा। इनके झूठ क्या थे उसका तस्करा किया, इसलिए भी कि ये लोग जिस चीज में इख्तलाफ करते थे इसे अल्लाह ताला साफ बयान कर दे, और इसलिए भी कि खुद काफिर अपना झूठा होना जान ले। आयत 40 देखिए, कुन फयाकुन इन्नमा कौलुना लिशैइन इज़ा अरदना इज़ा अरदनाहु अन नकूल लहू कुन फयकून। हम जब किसी चीज का इरादा करते हैं तो हम सिर्फ हमारा ये कह देना होता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। आप देखिए कि अल्लाह सबको पकड़कर जन्नत दे दे, सबको जहन्नुम में डाल दे, कलमा कुन की बात है, लेकिन अल्लाह ताला हुज्जतें तमाम करते हैं। और फिर आयत नंबर 40 से 42, हिजरत की खूबियां, अल्लाह की राह में हिजरत की क्या फजीलत है। वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बादी मा सुलिमो, जिन लोगों ने जुल्म बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह की राह में तरके वतन किया है, हम इन्हें बेहतर से बेहतर ठिकाना दुनिया में अता फरमाएंगे, और आखरत का सवाब तो बहुत बड़ा है। काश के लोग इससे वाकिफ होते, वो जिन्होंने दामने सब्र न छोड़ा और अपने पालने वाले पर ही भरोसा करते रहे। क्या पता चला, हयातन तैयबा लेने के लिए कुछ चीजों से हिजरत करनी पड़ती है। जगह तो कम ही लोगों को छोड़नी पड़ती हैं, आदतें छोड़नी पड़ती हैं, कारोबार बदलने पड़ते हैं, कुछ कपड़े बदलने पड़ते हैं, कुछ हाल खुलिये ठीक करने पड़ते हैं, कुछ खुशी गम के किबले बदलने पड़ते हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आयत 43 से 45, तमाम अंबिया इंसान थे, और हदीस कुरान की वजाहत करती है। ये दो मजमून आपको इसमें दिखेंगे। वमा अरसलना मिन कब्लिका इल्ला रिजालन नुही इलैहिम, आपसे पहले भी हम मर्दों को भेजते रहे जिनकी जाने वही उतारा करते थे, बस अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से दरियाफ्त कर लो, दलीलों और किताबों के साथ ये जिक्र यानी किताब हमने आपकी तरफ उतारा। अब देख रहे हैं कि इस सूरत में और इस पारे में कुरान को बार बार जिक्र कहा जा रहा है, यानी ये रिमाइंडर है, छोटे छोटे रिमाइंडर्स हैं आपके मेरे लिए कुरान की सूरत में। क्या उतारा है कि लोगों की जानिब जो नाजिल फरमाया गया है आप इसे खोल खोल कर बयान कर दें, शायद कि वो गौर व फिक्र करें। बदतरीन दाव पेच करने वाले क्या इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह ताला इन्हें जमीन में धसा दे, या इनके पास ऐसी जगह से अजाब आ जाए जहां कि इन्हें वहमो गुमान भी ना हो। या फिर आयत 46-50 तक, अगर अल्लाह की पकड़ आ जाए तो क्या होगा, औ या खुज़हुम फी तक़ल्लुबिहिम फ़मा हुम बिमौजिज़ीन, या इन्हें चलते फिरते पकड़ ले, ये किसी सूरत में अल्लाह ताला को आजिज नहीं कर सकते, या इन्हें डरा धमका कर पकड़ ले, बस यकीनन तुम्हारा परवरदिगार आला शफ़क़त और निहायत रहम वाला है। गोया के अल्लाह सुबहाना ताला ने आपको मुझे ये बात बता दी कि उसके अजाब से हर वक्त डरते रहो, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, अल्लाह की नाफरमानी का एक लम्हा ही क्यों ना हो, अगर मौत आ गई तो क्या होगा, अगर क्यामत आ गई तो क्या होगा। इसीलिए फरमाया, क्या उन्होंने अल्लाह की मखलूक में से किसी को नहीं देखा कि इसके साए दाएं बाएं झुक झुक कर अल्लाह के सामने सर बसजूद होते हैं और आजी का इजहार करते हैं। यकीनन आसमान और जमीन के कुल जानदार और तमाम फरिश्ते अल्लाह के सामने सजदे करते हैं और जरा भी तकब्बुर नहीं करते, और अपने रब से जो इनके ऊपर है कप कपाते रहते हैं, और जो हुक्म मिल जाए इसकी तामील करते रहते हैं। फरिश्ते बेगुनाह होकर इतना डरे, और हम गुनाहगार होकर न डरे, और हम न झुके, हमारे साए तो हमारे रब के सामने झुकते ही हैं। इसीलिए बायत 51 से आगे 56 तक शिर्क की कबाहते हैं। खास तौर पे 51-52 से पता चलता है कि दो माबूत न बनाओ। वकाल अल्लाह ला तत्तखिज़ु इलाहैन इस्नैन, अल्लाह ताला इरशाद फरमा चुका है कि दो माबूत ना बनाओ, माबूत तो सिर्फ वही अकेला है, बस तुम सब मेरा ही डर खौफ रखो, आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है, इसी की इबादत लाजिम है, क्या फिर तुम इसके सिवा औरों से डरते हो? पूछिए, कोई आपकी बनाई बिगड़ी बनाई कुछ नहीं कर सकता, तो खुद साख्ता तसव्वुरात दिल से निकालिए। आज कई लोगों की जिंदगी हयात तैयब नहीं रहती खौफ की वजह से, फला मेरा ये ना कर दे, फला ये ना कर दे, मुझे वो ना नाराज कर दे, ये है वो है, तो अल्लाह ताला कहते हैं सब को पीछे कर दो, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, तो अल्लाह ताला ही पे नजरें लगाने वाले पाकीजा जिंदगियां पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो फरमाया कि तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं सब उसी की दी हुई हैं, अब भी जब तुम्हें कोई मुसीबत पेश आए तो इसी की तरफ नालो फरियाद करते हो, और जहां इसने वो मुसीबत तुमसे दूर कर दी तो तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शिर्क करने लग जाते हैं, फितरत पे पड़े हुए पर्दे दुखों में हटने लगते हैं, अल्लाह हमारे खुशियों में भी हटा दे। और क्या कहा कि हमारी दी हुई नेमतों की नशुक्री करें, कितने नशुक्रे हो, हमारी दी हुई नेमत हमारी दी हुई खुशी के मौके को नाराजगियों में न गुजारते हो, तुम सबको राजी करना चाहते हो शादियों में, सब तुम्हारे घर से खुश जाएं, हत्ता के घर के मुलाजिम मासियां फुफियां खालाएं बहनें सबको खुश करके भेजो, तो अपनी खुशियों में तुम रब को नाराज करते हो, सबको बुलाते हो ने रहमत के फरिश्तों को नहीं बुलाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो क्या यही ना शुक्री करोगे अपनी खुशी के मौके पे? कोई बात नहीं, अच्छा कुछ फायदा उठा लो, आखिरकार तुम्हें मालूम हो जाएगा। याद रखिये, जिस खुशी में इंसान तैयब चीजों को निकालकर खबीस चीजें डाल दे, बाद में जरूर उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। शादी की खुशी थी, मियां बीवी में झगड़ा होगा, घरों में झगड़े होंगे, ससुराली और मैके के बीच में गलत फहमियां होंगी, लेन देन पे दिल खट्टे काले कड़वे कुछ ना कुछ होंगे, अल्लाह फिर दुनिया में पाक करता है, और अल्लाह ताला हमें दुनिया में ही अपनी समझ पे रखे ताकि हम अपने बच्चों को खूबसूरत जिंदगियों से आगाज करें, रहमतों और बरकतों के साथ उनकी खुशियां हों, और सच्चे मोमिनों का मिजाज ही ऐसा होता है कि वो अल्लाह की नाफरमानी के साथ अपनी खुशी और वो दिन जिसमें सबसे ज्यादा नेमतें मिले उसको कभी भी शुरू नहीं करना चाहते, और जिसे जानते बूझते भी नहीं इसका हिस्सा हमारी दी हुई रोजी में से मुकर्रर करते हैं। वल्लाह तुम्हारे इस बख्तान का सवाल तुमसे जरूर किया जाएगा। आयत 57-60, मुश्रिकीन मक्का की एक बेइंसाफी, और वो क्या कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, कुछ तो अल्लाह की बेटियां करार देते और अपने साथ बेटियों को इतना बुरा समझते कि जिंदा दरगोर करते। अल्लाह ताला कहते हैं इनको बता दो कि बेटी एक रहमत है। وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، और वल्लाह सुबहाना ताला के लिए लड़कियां मुकर्रर करते हैं और अपने लिए वो जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हो। इनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाए तो इसका चेहरा स्याह हो जाता है और दिल ही दिल में घुटने लगता है। इस बुरी खबर की वजह से लोगों से छुपता फिरता है, सोचता है कि क्या इसको जिल्लत के साथ लिए हुए ही रहे या इसे मट्टी में दबा दे। आह क्या ही बुरे फैसले करते हैं, आखिरत पर ईमान न रखने वालों की ही बुरी मिसाल है। अल्लाह ताला के लिए तो बहुत ही बुलंद सिफत है, वो बड़ा गालिब और बाहिकमत है। बेटी हर दौर में एक बोझ लगी सिवाय इस्लाम को समझने के। जहेज एक लानत बनकर हमारे कल्चर में क्या आ गया, बेटियों वालों की गर्दनें झुक गईं, और आज अगर कोई दीन पे आके कहे मुझे बेटी कर नहीं लेना जहेज, तो बच्चे लड़के वालों को अगर ये अल्लाह तौफीक दे दे तो बेटी वालों को भी उनकी कदर करनी चाहिए, इसलिए कि इसमें नहीं टूटेंगी जब तक दीन सीखे हुए समझे हुए समझाए हुए लोग नहीं तोड़ेंगे। तो आज के दौर का एक ये भी मसला बना कि जब कुछ लोगों को समझ आती है फिर वो कहते हैं कि हमें जहेज देना नहीं या हमें लेना नहीं, तो दूसरी तरफ से लोग उसके ऊपर तावुन नहीं करते। अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों को जहेज की गंदगी से पाक करके हयातन तैयब करे। वो मर्द बड़ा ही बागैरत है कि जो अपने घर के टूटे फूटे पलंग पे सो जाए लेकिन ससुराल से बड़े भारी बेड का मुतालबा न करे। अल्लाह आज उम्मत के इस नासूर को भी दूर करे। हमारी एक अक्सरियत बेटियों को लेकर बैठी हुई आहें भरती होके भरती है। अल्लाह ताला हमें उन तक सच्चा कुरान पहुंचाने और पढ़ने वाला बता दे। आगे देखिए मुश्रिकीन मक्का की कुछ गुस्ताखियां हैं, आय 61 से 65। वलव युआखिज़ुल्लाहुन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरका अलैहा, अगर लोगों के गुनाह पर अल्लाह ताला इनकी गिरफ्त करता तो रुए जमीन पर एक जानदार भी बाकी न रहता। लेकिन वो तो इन्हें एक वक्त मुकर्रर तक ढील देता है। जब इनका वो वक्त आ जाता है तो वे एक साथ ना तो पीछे रह सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं, और वो अपने लिए जो नापसंद रखते हैं अल्लाह के लिए साबित करते हैं, और इनकी जुबानें झूठी बातें बयान करती हैं। इनके लिए खूबी है? नहीं नहीं, दरअसल इनके लिए आग है और ये दोस्तियों के पेश रो हैं। वल्लाही हमने आपसे पहले की उम्मतों की तरफ भी अपने रसूल भेजे, लेकिन शैतान ने इनके आमाले व इनकी निगाहों में आरास्ता बना दिए। वो शैतान आज भी इनका रफीक बना हुआ है और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इस किताब को हमने आप पर इसलिए उतारा कि आप इनके लिए हर उस चीज को वाजह कर दीजिए जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं, और ईमानदारों के लिए रहनुमाई और रहमत है। क्या पता चला? वहुदम व रहमतल्लि कौमी युमिनून, नज़ूले कुरान का मकसद हिदायत और रहमत था। आज हमने क्या कर दिया? आज अपनी जिंदगी को इस पर लेकर सोचें तो आपको रोना आएगा कि हमने क्या बना दिया। ये तो अल्लाह की रहमत है तो आज हम बैठे हुए हैं, ये ना होती तो इंसान अपनी मस्तियों की वजह से कब का नीस तो नाबूद कर दिया गया होता। और हकीकत है कि 100-100 गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पर आज हमारा ये हाल है। लेकिन यकीनन शैतान ऐसा चुंगल इंसान को देता है, ऐसे चुंगल में फंसा देता है कि बातें भी अपनी मर्जी के करके लोग फिर बात मंसूब भी अल्लाह की तरफ करते हैं। सिला रहमी है, अल्लाह कहते तोहफे दो तोहफे लो। भाई तोहफे दो, रस्में तो ना बनाओ। 5 तोले के कड़े कौन देता है तोहफे में? फिर आप भी तो दीजिए ना लड़के की माँ को 5 तोले के कड़े, और बेटी की माँ को आप भी दीजिए। फिर एक और रस्म बना लेंगे, अब और पहले ही नहीं थे परेशानियों से निकलते, अब एक और में फंस गए। याद रखिए इन रस्मों का कलाकमा कीजिए, वरना जिंदगी हयातन तैयब नहीं होगी। अल्लाह ताला रस्सियां दराज करता है। जब कौमों का मकसद सिर्फ अपनी सेलिब्रेशंस रह जाता है तो फिर कौन पकड़े गैर मुस्लिमों को जाकर बताए और कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आज हमारे इस कल्चर में 90% लोग अपनी शादियों और घर बनाने सजाने संवारने की वजह से फुल टाइम कुरान को फोकस होकर नहीं ले दे पाते। तो जरा सा एक फ्लो चार्ट आपके सामने, इसको देखिए। नेमत कुरान पर ईमान और अमल की असल शुक्रगुजारी है। बाकी चूम लीजिए, चाट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो नज़ूले कुरान का मकसद हिदायत और रहमत और इख्तलाफात को दूर करना। अल्लाह ताला की ये खूबसूरत किताब है जो हकीकत में आपको मुझे ये सब कुछ बता रही है। अल्लाह हमें इस पे गौर व फिक्र वाला बना दे। आगे आयत 65 है, और अल्लाह आसमान से पानी बरसाकर इससे जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा कर देता है। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो सुने। आप देख रहे सूरत नहल कैसे आपको नेमतों की तस्कीर करवाती भी दिखती है। आगे आए 66 से 69 तक कुछ और नेमतें और नेमतों की पहचान दी जा रही है आपको मुझे किस सूरत में। इस सूरत में कि नेमतों को पहचानो और उसके शुक्रगुजार बन जाओ। कुरान की फैसला कुन वजाहत हदीस नबवी है, इन दोनों को साथ जोड़ते जाएं, ये कुरान नेमत हिदायत भी बनेगा। और फिर अब यहां आगे आपको आयत 65 से 69 में 4 मशरूबात की सूरत में अल्लाह की नेमत दिखेगी। आइए देखते हैं। व इन लकुम फिल अनामि लइबरा, तुम्हारे लिए तो छुपायों में भी बड़ी इबरत है कि हम तुम्हें इसके पेट में जो कुछ है इसी में से गोबर और लहू के दरमियान से खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए सहता पचता है, यानी इजी टू डाइजेस्ट। बच्चा भी दूध पीता है कुछ माह तक, फिर कहीं खाने के काबिल होता है। बूढ़ा भी अर्जल उम्र में पहुंचकर आखिर दूध पे लग जाता है। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की आपके मेरे पास। फिर खजूर और अंगूर के दरख्तों के फलों से तुम शराब बना लेते हो और उम्दा रोजी भी। जो लोग अकल रखते हैं इनके लिए तो बहुत बड़ी निशानी है। आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में, दरख्तों में और लोगों की बनाई हुई ऊंची ऊंची छतों में अपने घर यानी अपने छत्ते बना लो, अल्लाह अकबर, और हर तरह के मेवे खाओ और अपने रब की आसान राहों में चलती फिरती रहो। इनके पेड़ से रंग बिरंग का मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ है और जिसमें लोगों के लिए शिफा है, गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है। जरा सा गौर कीजिए, चार नेमतों में जैसे पानी है, खालिश दूध की बात हुई, खजूर और अंगूर से पाकीजा मशरूब, और अब यहाँ बात है शहद की। आयत 69 में शहद की मक्खी पे गौर व फिक्र करने के लिए अल्लाह ताला आपको मुझे दावत देते हैं। अब देखिए कि शहद की मक्खी के बतन से खारिज होने वाला शहद जिसका जायका रंग मुख्तलिफ है, कई रंगों के शहद आपको भी नजर आते होंगे, कितने टेस्ट हैं, जिन फूलों से लेती है उस तरह का रंग बन जाता है, अमराज की शिफा है, कुदरत का नमूना है, फलों का रस चूसती है फिर इसे शहद में बदल देती है। क्या पता चला आपको मुझे, ये कुरान भी एक शिफा है, दोनों का जिक्र इकट्ठा आता है। इस वक्त भी जो कुरान आप सुन रहे हैं ये कई फूलों का रस है जो निचोड़कर इस वक्त आपको दारे कुरान की सूरत में मिल रहा है। इसकी कोशिश कीजिए, शहद की मक्खी के प्रोसेस को समझने के लिए क्लासेस में पूरा एक प्रेजेंटेशन होता है जिसमें शहद की मक्खी के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। एक मलका मक्खी होती है, बाकी वर्कर्स होती हैं, एक क्वीन है तो बाकी वर्कर्स हैं, और पूरा फितरत का निजाम के एक को लेकर चलो और बाकी काम करें और फिर इंसानियत को शहद देकर दुनिया से चली जाती है, 50,000 उड़ाने चलती है और एक शहद की मक्खी सारी जिंदगी में सिर्फ एक चम्मच शहद भी नहीं बना पाती, लेकिन उसको कोई गम नहीं है, उसको ये पता है कि मैं एक मकसद के साथ जी रही हूं और मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला ने ये मकसदियत डालकर मुझे अपने काम का बना लिया है। आपको मुझे भी अपने लिए यही दुआ करनी है, टीम वर्क मांगिए, अपनी स्किल्स को खपाने के लिए अल्लाह मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखा दे। आप मैं जो हैं वही रहेंगे, हम बदल नहीं सकते, आंख कान नहीं बन सकती, कान आंख नहीं बन सकता, तो जो खूबी आपके अंदर नुमाया है उसको लेकर आगे चलिए और इंसानियत को शहद जैसी ये शिफा बख्श किताब यानी कुरान पाक दीजिए। आगे आयत 70 से 72 में इंसान की बेबसी है, जिंदगी के बदलते रूप, कभी की बचपन जवानी और अब बुढ़ापे में आगे, जरा सा दिल को रकीक करके रिक्कत कल्बी के साथ सुनिएगा। वल्लाहु खलकक्कुम सुम्मा यतवफ्फाकुम, अल्लाह ही ने तुम सबको पैदा किया, वही तुम्हें फौत कर देगा, तुम में से ऐसे भी हैं जो बदतरीन उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं, अर्जल उम्र, जियो तो जीने का मजा नहीं और जाने को दिल भी नहीं करता, घर वालों पे भी बोझ है और बहुएं भी नाक मुंह चढ़ाए, बेटे भी परेशान हैं, करें तो क्या करें, कहा कि तुम्हें अर्जल उम्र में लौटा देता है कि सब कुछ जानते बूझते भी ना जाने, बेशक अल्लाह ताला दाना और तवाना है। ऐसी अर्जल उम्र से पनाह मांगी अल्लाह के नबी ने, दुआ में दुआ है अल्लाह मैं नियाउज़ बिका मिन अनुरद्दा इला अर्जल उम्र, कि अल्लाह मैं अर्जल उम्र की तरफ ना पहुंचाया जाऊं। आप देखिए कि लंबी उम्र नेमत है, और आपको पीछे एक हदीस सुनाई थी, आपको याद नहीं होगा, मुझे याद है कि कुरान वाले को अर्जल उम्र नहीं मिलती, 40, 50, 60, 70, 80 के भी होकर जाएंगे ना दुनिया से तो दिमाग खराब नहीं होगा, दीवाने और मजनू और बांकेपन नहीं आएंगे, क्योंकि ये अल्लाह सुभाना तला की तरफ से एक रहमत होती है। तो अभी से कुरान के साथ जुड़ जाएं, आपका बुढ़ापा फिर काबिले रहम नहीं रहेगा, आपको अल्लाह ताला दीवाना और बहुत अजीबोगरीब हरकतों से पाक रखेगा। जो उम्र है वो तो है ही है, लेकिन असल बात यह है कि इंसान अपनी जिंदगी को इज्जत के साथ गुजारने के काबिल हो जाए। फिर फरमाया अल्लाह ही ताला ने तुमको एक दूसरे पर रोजी में ज्यादती दे रखी है, बस इन्हें ज्यादती दी गई है, वो अपनी रोजी अपने मातहतों को नहीं देते कि वो और ये इसमें बराबर हो जाएं, तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमतों के मुनकर हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हें से ही तुम्हारी बीवियां पैदा की और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए बेटे और पोते पैदा किए और तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी, क्या फिर भी लोग बातिल पर ईमान लाएंगे और अल्लाह ताला की नेमतों की नशुक्री करेंगे। क्या खूबसूरत अंदाज है कैसे अल्लाह ताला जवानी बचपन बुढ़ापा और अर्जल उम्र के बाद अब औलादों और पोतों की बात करते हैं। यह है इंसान की बेबसी और लाचारगी है। मौत दे दे तो मौत से कोई मफर नहीं, जिंदगी दे दे तो मर नहीं सकते, जीने को दिल नहीं कर रहा तो जाने नहीं दे रहा अल्लाह ताला। कहते हैं ना कि लाई हयात आई कजा ले चली चले, अपनी खुशी आए न अपनी खुशी चले। तो यहां अल्लाह ताला शिर्क की नफी के लिए आप जो मिसालें हमें देते हैं इस पे भी गौर व फिक्र कीजिए कि हम तो अपने नौकरों को अपने आधे बैंक बैलेंस ना दे दें तो क्या तुमने अल्लाह के लिए कुछ बुजुर्गों और कुछ बुतों को बड़ा बना दिया? तो ये नाशुक्री है। इसीलिए कहा अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं। आयत 73 से 78 को देखिएगा, इंसान की नाशुक्रियों की बात है और अल्लाह ताला के आगे शुक्रगुजार बनने के लिए आगे आपको दो बड़ी बलीग मिसालें मिलने वाली हैं। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम, और वो अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हैं जो आसमानों और जमीन से इन्हें कुछ भी रोजी नहीं दे सकते और न कुदरत रखते हैं। बस अल्लाह ताला के लिए मिसालें मत बनाओ, अल्लाह ताला खूब जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला एक मिसाल बयान करता है कि एक गुलाम है दूसरे की मलकियत का जो किसी बात का इख्तियार नहीं रखता, और एक वो शख्स है जिसको हमने अपने पास से माकूल रोजी दे रखी है जिसमें से वो खुले छुपे खर्च करता है। क्या ये सब बराबर हो सकते हैं? जवाब दीजिए, नहीं हो सकते। अब्द और माबूद बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह फिर फरमाबरदार और नाफरमान बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ही के लिए सब तारीफ है बल्कि इनमें से अक्सर नहीं जानते। अल्लाह ताला के लिए एक और मिसाल बयान की गई। क्या? अल्लाह ताला एक और मिसाल बयान फरमाता है दो शख्सों की जिनमें एक तो गूंगा है और किसी चीज पर इख्तियार नहीं रखता बल्कि वो अपने मालिक पर बोझ है, कहीं भी से भेज दो कोई भलाई नहीं लाता। यानी दीवाना सा है बेचारा, सीधा भुलक्कड़ और उल्टी सीधी चीजें खरीद के ले आता है। कोई ऐसा मुलाजिम जेन में ले आइए। क्या ये और वो जो अदल का हुक्म देता है और है भी सीधी राह पर बराबर हो सकते हैं? तो जवाब है कि नहीं हो सकते। असल में फरमा बरदार और नाफरमान की बात है, हयाते तैयब और हयाते खबीस शख्स की बात है कि किसी के पास अगर ऐसा कोई मामला हो तो क्या वो इसको सामने रखकर अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को महसूस नहीं कर सकता। तो बात ये है कि आसमान और जमीन का गैब सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। क़यामत का अमर तो सिर्फ ऐसा ही है जैसे आंख का झपकना, कलम हिल बसर, ब्लिंक ऑफ आई, बल्कि इससे भी ज्यादा करीब। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला है कि इस वक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे, इसी ने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए कि तुम शुक्र गुजारी करो। सवाल लिखिए कि अल्लाह की इन नेमतों को जो उसने मुझे दी आंखों कान और दिल की सूरत में इसका सही इस्तेमाल करती हूँ, और अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह हमसे छीन लेगा ये नेमतें और इसमें हक देखने सुनने की तौफीक खत्म कर देगा। आगे 79 से 81 में बहुत ही खूबसूरत तरीके से घर और सुकून दो अजीम नेमतों की सूरत में आपके मेरे सामने हैं। और घर चाहे वो कहते हैं ना तिनकों का क्यों ना हो, चैन बंदे को घर में ही जाकर आता है। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं अलम यरौलत तैरी मुसख्खरात फी जव्विस समा, क्या इन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा जो ताबे फरमान है, जो ताबे फरमा होकर फिजा में है, जिन्हें सिवाय अल्लाह के कोई और थामे हुए नहीं। बेशक इसमें ईमान लाने वाले लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं। क्या पता चला कि ये बड़े बड़े हवाई जहाज जो उड़ते हैं ना, ये अल्लाह की रहमतों से उड़ रहे हैं, तुम इनको नहीं चला सकते थे जब तक अल्लाह ना चाहे। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए घरों में सुकूनत की जगह बना दी, और इसी ने तुम्हारे लिए चौपायों की खालों के घर बना दिए हैं जिन्हें तुम हल्का फुल्का पाते हो अपने कूच के दिन और अपने ठहरने के दिन भी, और इनकी ऊन और रूमों और बालों से भी। इसने बहुत से सामान और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए फायदे की चीजें बना दी। अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा करदा चीजों में से साए बनाए हैं, और इसी ने तुम्हारे लिए पहाड़ों में गार बनाए हैं, और इसी ने तुम्हारे लिए कुर्ते बनाए हैं जो तुम्हें गर्मी से बचाए, और ऐसे कुर्ते भी जो तुम्हें लड़ाई के वक्त काम आए। वो इसी तरह अपनी पूरी पूरी नेमते दे रहा है कि तुम हुक्म बरदार बन जाओ। क्या पता चला कि अल्लाह की नेमतों को पहचानो, समझो, गौर करो, अल्लाह तुम्हें इतना कुछ दे रहा है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि अंदाज थोड़ा सा बदलता जा रहा है। अल्लाह ताला कैसे हमें आयत 82 से 89 में नेमतों की नशुक्री करने से रोकते हैं और बीच में आपको उम्मत के खिलाफ रसूलों की गवाही का पैगाम मिलेगा। फइन तवल्लौ फइन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, ये भी अगर ये मुंह फेरे, फिर भी अगर ये मुंह मोड़े रहें, तो आप पर सिर्फ खोल कर तबलीग कर देना ही है। ये अल्लाह की नेमतें जानते बूझते, जानते पहचानते हुए भी इनके मुनकर हो रहे हैं, बल्कि इनमें से अक्सर ना शुक्रे हैं। और जिस वक्त हम हर उम्मत में से गवाह खड़ा करेंगे, जरा सा इस आयत को अल्लाह के नबी के तनाजर में देखिए, रिक्कत कल्बी वाली आयतें, और इसी पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुआ करते थे कि अल्लाह ताला ये सारा क्या मामला होगा। और हकीकत है कि आज भी हर नेमत वाला और हर दीन वाला इसी जिम्मेदारी को महसूस करेगा, तभी फिर लोगों की जिंदगियां पाकिजा होंगी और दीन का ये काम होता जाएगा। अपने घरों के कंफर्ट, अपनी जाती जिंदगी की खुशियों गमियों को छोटा कीजिए और लोगों को नागंदी जिंदगियों से निकालकर साफ जिंदगियों की तरफ मायल कीजिए। फरमाया फिर जिस वक्त, दोबारा सुनिए इसको, और जिस वक्त हम हर उम्मत में से गवाह खड़ा करेंगे, फिर काफिरों को न इजाजत दी जाएगी और न इनसे तौबा करने को कहा जाएगा, क्योंकि फायदा ही कोई नहीं, वक्त तो गुजर गया। आपको अल्लाह ने इतनी मौके दी, इतनी मोहलतें दी, लेकिन आप इसको नहीं लेना चाहते थे, तो आपकी मर्जी। और जब ये जालिम अज़ाब देख लेंगे, फिर ना तो इनसे हल्का किया जाएगा और ना ढील दिए जाएंगे। और जब मुशरिकीन अपने शरीकों को देख लेंगे, तो कहेंगे ऐ हमारे परवरदिगार, यही वो हमारे शरीक हैं जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। बस वो इन्हें जवाब देंगे कि तुम बिल्कुल झूठे हो। जरा से इस पे रुकिए, जो शिर्क की वजह से अपनी जिंदगियों को गंदे कर चुके और जो सिर्फ नासमझी की वजह से इंसानों के आगे जाके झुकते या मूर्तियों के आगे झुकते, कल क्यामत के दिन उनका क्या हाल होगा, ये सब कुछ इन आयतों में। सिर्फ इसका तर्जुमा सुन लीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे दिलों को खोल दे। आयत 85, और जब ये जालिम अज़ाब देख लेंगे, फिर ना तो इनसे हल्का किया जाएगा ना वो ढील दिए जाएंगे। और जब मुश्रिकीन अपने शरीकों को देख लेंगे, तो कहेंगे ऐ हमारे परवरदिगार, यही वो हमारे शरीक हैं जिन्हें हम तुझको छोड़कर पुकारा करते थे। बस वो इन्हें जवाब देंगे कि तुम बिल्कुल ही झूठे हो। इस दिन वो सब आजिज होकर अल्लाह के सामने इताअत का इकरार करेंगे और इताअत का इकरार पेश करेंगे, और जो बुख्तानबाजी किया करते थे वो सब इनसे गुम हो जाएगी। कभी आप तसव्वुर से भी देखे ना ये बात, आंखों से नहीं भी देखा तो किसी इंसान के आगे आप देखिए कि किसी भी आयत को अगर आप पढ़ते हैं जो कुरान में आपके सामने आती है, तो आपको समझ आ जाती है कि ये लोग कैसे एक इंसान के सामने झुकते हैं जो खुद भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ कर सके तो कब्र की मट्टी तो हटा दे, कुछ करे तो अपनी दरगाह को हटाकर ऊपर मनो टनो वजन को तो हटा दे। और जो बेजान मूर्तियां उनकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। तो आप देखिए आयत नंबर 85 से दोबारा पढ़ूंगी ताकि आप शऊर के साथ इसको सुने। और जब ये जालिम अज़ाब देख लेंगे, फिर ना तो इनसे हल्का किया जाएगा ना वो ढील दिए जाएंगे। और जब मुशरिकीन अपने शरीकों से देख लेंगे, तो कहेंगे हमारे परवरदिगार, यही वो शरीक है जिन्हें हम तुझको छोड़कर पुकारा करते थे। बस वो इन्हें जवाब देंगे कि तुम बिल्कुल ही झूठे हो। क्या इन आयतों को दोबारा सुनकर दिल में कुछ हुआ? अल्लाह ताला हमारे दिलों को खोल दे। इस दिन वो सब आजिज होकर अल्लाह के सामने इताअत का इकरार पेश करेंगे, और जो बुख्तानबाजी किया करते थे वो सब इनसे गुम हो जाएगी। क्या थी बुख्तानबाजी? फुलां करनी आला, फुलां दस्तगीर, फुलां मुश्किल कुशा, ये सारे नाम अल्लाह के साथ जोड़ दीजिए तो आप अल्लाह के प्यारे बन जाएंगे। आयत 88, जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका, हम इन्हें अजाब पर अजाब बढ़ाते जाएंगे। ये बदला होगा इनकी फितना परदासियों का, और जिस दिन हम हर उम्मत में इन्हीं में से इनके मुकाबले पर गवाह खड़ा करेंगे और तुझे इन सब पर गवाह बना कर लाएंगे। और हमने तुझ पर ये किताब नाजिल फरमाई है जिसमें हर चीज का शाफी बयान है और हिदायत और रहमत और खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। कितनी खुशी होती है आपको लफ्ज मुसलमान सुनकर आयत 89 में। फिर खुदम व रहमा व बुशरा, तीन खूबियां, पूरा पारा आपको कुरान की इन खूबियों से भरा हुआ दिखा है। अब तो बिल्कुल तकमील के पास पहुंच रहे हैं, फिर भी हुज्जत तमाम ना हुई तो क्या बनेगा? दिल की आंखों से देखिए, दिल के कानों से सुनिए और दुआ मांगिए कि अल्लाह हमारी मदद कर दे। और बात सच है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। कैसे वो लोग क्यामत के दिन उनसे बेनियाज होंगे जिनको वो पूछते थे। देखिए बड़े बड़े औलिया कराम क्यामत के दिन डर रहे होंगे इस बात पे कि अल्लाह हमने नहीं कहा था इनको कि हमसे मांगो, हमने नहीं कहा था हमें सजदे करो, हम तो खुद सारी जिंदगी रब से मांगते गए, हम तो सारी जिंदगी उसी के आगे झुके, हमें तो कभी तौफीक ना हुई किसी और के आगे सर झुकाने की, या वो हमारे ही आगे झुकने लग गए तो हम क्या करें। देखिए दो तरह के औलिया कराम मारूफ हैं, एक वो जो सच्चे थे वाकई थे, वो तो तौहीद के प्रचार करते हुए दुनिया से चले गए, अल्लाह ने उनको उनकी खूबियों का अजर दिया कि लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी। लेकिन एक वो बदबख्त हैं जो अपनी जिंदगी में लोगों को अपनी कब्रें और मजार और बनाने के लिए माइल कर जाते और साथ ही दुनिया में अपने आगे सजदे करवाते, जरूरत नहीं। तो किसी ने कहा कि बागबान ने आग लगा दी जब आशियाने में मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। बिल्कुल शिर्क और शिर्क के बुलाने वालों पे ये शेर पूरी तरह फिट होता है। अल्लाह ताला इसे बचा के रखे। और अल्लाह के नबी की खिलाफ जो गवाही है उनके ऊपर 89 पे, इसने अल्लाह के नबी को दुखी किया हुआ था। आगे आयत 90 लिखिए, अल्लाह की पसंद और नापसंद, कुछ हुआ दिल को? जी पीछे भी पढ़ के आए, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सु, आया छठे पारे का पहला हिस्सा। यहां अब आपके सामने वो खूबसूरत आयत है जिसमें अदल, एहसान और रिश्तेदारों को मिलाने की बात है। मारूफ आयत है। उस्मान बिन मजून के दिल में इन आयत को सुनकर ईमान आया। जुमे के खुतबे में उमर बिन अब्दुल अजीज ने इसको शामिल कराया और आज भी हमारे भाई जुमे के खुतबों में इसको पढ़कर सुनकर आते हैं, लेकिन अफसोस समझ ही कुछ नहीं आता। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह किन बातों को, छह बातों का जिक्र है, तीन अच्छी तीन बुरी, तीन पसंद की तीन नापसंद की। इन अल्लाह या मुरबिलतली वल एहसान, अल्लाह ताला अदल का, भलाई का और खराबदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है और बेहयाई के कामों, नाशायस्ता हरकतों और जुल्म ज्यादती से रोकता है। वो खुद तुम्हें नसीहतें कर रहा है कि तुम नसीहत हासिल करो। अल्लाह हमें कुरान समझने वाला बनाए ताकि हम हर जुमे को जब ये आयतें पढ़ें तो अपना मुहासबा करें। और इस आयत की आप तफसीर भी सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, बहुत डिटेल से इसमें छह अहकाम है जो पूरे दीन का एक किस्म का खुलासा भी है। आयत 91 अहद शिकनी की सजा है, बल्कि अगर आप आयत 91 से 94 तक रखें तो मुआहदात की पासदारी का हुक्म है कि वादे पूरे करो। हमारा दीन वादा शिकनी को इंतहाई ना पसंद करता है, कमिटमेंट करके ना पूरा करना और अपने जो एग्रीमेंट्स है उनको फॉलो ना करना, इस्लाम इसको इंतहाई बुरा समझता है। वाउफु बिअहदिल्लाहि इज़ा अहदतुम वला तन्क़ुदुल अयमान, और अल्लाह ताला के अहद को पूरा करो जबकि तुम आपस में कौलो इकरार कर लो और कस्मों को इनकी पुख्तगी के बाद मत तोड़ो। हालांकि तुम अल्लाह ताला को अपना जामिन ठहरा चुके हो, तुम जो कुछ करते हो अल्लाह ताला इसको बखूबी जान रहा है। और इसमें अब एक मिसाल है, एक औरत की तमसील दी जा रही है, आयत 92 से 96, वफाए अहद। वला तकूनु कल्लती नकदत गज़लहा मिन बाद कुव्वतिन इनकासा मिम्बादी कुव्वत इन अनकासा, और इस औरत की तरह न हो जाओ जिसने अपना सूत मजबूत काटने के बाद टुकड़े टुकड़े करके तोड़ डाला कि तुम अपनी कस्मों का आपस के मकर का बायस ठहराओ, इसलिए कि एक गिरोह दूसरे गिरोह से बड़ा चढ़ा हुआ हो जाए। बस सिर्फ यही है कि सहज से अल्लाह ताला तुम्हें आसमा रहा है, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे लिए क़यामत के दिन हर चीज को खोल कर बयान कर देगा जिसमें तुम इख्तलाफ कर रहे थे। अगर अल्लाह चाहता तो तुम सब को एक ही गिरोह बना देता, लेकिन वो जिसे चाहे गुमराह करता है और जिसे चाहे हिदायत देता है। यकीनन तुम जो कुछ कर रहे हो इसके बारे में बासपुरस की जाने वाली है। और तुम अपनी कस्मों का आपस की दगाबाजी का बहाना न बनाओ, फिर तो तुम्हारे कदम अपनी मजबूती के बाद डगमगा जाएंगे और तुम्हें सख्त सजा बर्दाश्त करना पड़ेगी, क्योंकि तुमने अल्लाह की राह से रोक दिया और तुम्हें बड़ा सख्त अजाब होगा। तुम अल्लाह के अहद को थोड़े मोल के बदले ना बेच दिया करो। याद रखो अल्लाह के पास की चीज ही तुम्हारे लिए बेहतर है, बशर्ते कि तुम में इल्म हो। इल्म हो, तीन दफा बोलूं, बशर्ते कि तुम में इल्म हो। इल्म ही ये सारी बातें सुझाता है जिसको आज तक पीछे डालकर हम अपनी जिंदगियों को पाकीजा रखने से रोके हुए थे। और रह गई वो दुनिया जिसके पीछे इंसान रोता है, खपता है, मिट्टी में मिट्टी हो जाता है। तो उसकी हकीकत सुनिए, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक, जो कुछ तुम्हारे पास है सब फानी है। इस जो कुछ की लंबी लिस्ट अपने जहन में लाइए, हमारी तो एक फुट की लिस्ट होगी शायद कम से कम, और अल्लाह के पास जो कुछ है बाकी है। और सब्र करने वालों को हम भले आमाल का बदला बेहतरीन सूरत में जरूर अता फरमाएंगे। दुनिया को छोड़िए, हयात तैयब लीजिए। देखिए क्वालिटी अच्छी के क्वांटिटी अच्छी, आप जिंदगी को क्वालिटी लाइफ बनाकर गुजारें, मकसदियत के साथ, अपनी और दूसरों की हिदायत के साथ। और क्वालिटी नहीं है तो क्वांटिटी छोड़ दीजिए, आप 500 गज से 1000 के घर में चले जाएं, 2 कनाल से 10 कनाल के घर में चले जाएं, दिल की खुशी नहीं होगी। तो आयत 93 पे लिख लीजिए कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, वो हमारे अमाल से बाखबर है, अल्लाह हमें हिदायत की तरफ रखे। फिर आप देखिए वयाहदी मई यशा पे आपको हिदायत की आयत मिल रही है, आयत 93। क्या पता चला कि अल्लाह अपने फजल से जिसे चाहता है हिदायत देता है। और अल्लाह का इंसानों को हिदायत देना अल्लाह के इल्म और हिकमत के ताबे, यानी इसको गलती नहीं लगती। अल्लाह ने जिसका दिल हिदायत के लिए खोल दिया वही हिदायत पाएंगे। आप मांगे ना और जबरदस्ती अल्लाह आपको दे दे, अल्लाह की आदत नहीं है। और आगे आपकी खूबसूरत आयत क्या है जो आपको मुझे इस बात की दावत दे रही है कि हम एक बार फिर पारे के एंड पे अपने आप को तैयार कर लें कि अब हमारी जिंदगी पाकीजा जिंदगी होगी, हम वादा शिकनी नहीं करेंगे, माहदात करके नहीं तोड़ेंगे, बाकी रहने वाली के ऊपर सना होने वाली को मिटाएंगे। किसी का एक बड़ा प्यारा कॉल याद आ गया, उन्होंने कहा कि अगर ये दुनिया मिट्टी की होती नहीं, ये दुनिया अगर सोने की होती और आखिरत मिट्टी की होती तो फिर भी मैं मिट्टी को कबूल कर लेता, सोना छोड़ता। यानी जो चले जो जानी है उसको लेके क्या करना है। अगर ये सारी सोने की होती है और जिनकी होती है उनका तो जाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो आइए पढ़ते हैं, मनामिला सालेहन मिन सकरिन औ उनसा वहुवा मोमिनुन, पाकीजा जिंदगी अल्लाह का इनाम है। कैसे, जो शख्स नेक अमल करे मर्द हो या औरत, लेकिन हो बा ईमान, तो हम इसे यकीनन नहायत बेहतर जिंदगी अनायत फरमाएंगे और इनके नेक अमाल का बेहतर बदला भी इनको जरूर देंगे। लिखिए एक जुमला, दिल की तख्ती पे कुरान के इल्म के बगैर हयात तैयबा मुमकिन नहीं। फिर बोलूं, ये शायद मेरा ही दिल है। कुरान के इल्म के बगैर हयात तैयबा मुमकिन नहीं है, ये कल्बे मोमिन है। मोमिन के दिल में ये बात लिखी होती है। क्या लिखी होती है, 3 बातें आपके सामने हैं, देख लीजिए। पहली बात, जजाए अमल में मर्द और औरत बराबर हैं। ईमान से अमल की कदरों कीमत बनती है और मोमिन को दुनिया में पाकीजा जिंदगी और आखिर में अजर मिलेगा। अल्लाह हमें ईमान वाला बना दे। आगे आयत 98 से 100, तावुज पढ़कर कुरान पढ़ना है। क्या पढ़ा, आप देखिए कि एक ऐसी आयत जिसमें हमारी जिंदगी की खूबसूरतियों का जिक्र था, इत्मीनान का जिक्र था, और जिस जिंदगी को अल्लाह ने वाकई मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी के लिए रखा था, अच्छा गुजारने के बाद अब आगे हमें एक और ही पैगाम मिल रहा है, और वो यही है कि कुरान पढ़ने के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट शैतान। कभी तुम्हें बहकाता है, तुम्हें मुश्किल लगता है, तुम्हारा अपना नफ्स नहीं मानता और अंदर का तागूत खत्म नहीं होता, और उसके बाद फिर जब वो मान जाए तो घर वाले मान जाए तो खानदान वाले, तो खानदान वाले मान जाए तो बिरादरी और ये सारे। तो क्या करो, फैजा करातल कुरान फस्ताइज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तावुज पढ़कर कुरान पढ़िए। इसीलिए आप देखते हैं कि जहां बीच में आयतें शुरू होती हैं हम पहले औजुबिल्लाह पढ़ते हैं, और पहले दिन से आपको ये सबक सिखाया जा रहा है कि शैतान से अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि जितना ज्यादा एक इंसान अल्लाह सुबहाना ताला के ऊपर राजी होता है, उसको हयात तैयबा का यकीन आ जाता है, तो वो भी फिर शैतान को ये कह देता है कि छुट्टी करो। कैसे, कुरान पढ़ने के वक्त रांधे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह हासिल करो, अल्लाह की पनाह तलब करो। ईमान वालों और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखने वालों पर इसका जोर बिल्कुल नहीं चलता। हाँ, इसका गलबा इन पर तो यकीनन है जो इसी से रिफाकत करें और इसे अल्लाह का शरीक ठहरा दें। आप देखिए कि मैंने अपनी जिंदगी का कुल सरमाया महबूब की राह में निछावर कर दिया। मैं खुश हूँ अपनी बीती हुई जिंदगी पर कि मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ये तर्जमा है एक फारसी के शेर का जो हाफिज शिराजी कहते हैं, हासिले उम्रे निसारे रहे यारे करदम, शादम अज जिंदगी खवेश के कारे करदम। आप भी यही कहिए, कुरान वाले की जिंदगी जाया नहीं होती। वो जिंदगी की आखिरी घड़ियां चाहे अर्जल उम्र पे पहुंच जाए, वो कहता है जो मैंने करना था वही करके आया हूं। इसके बरक शैतान का वार उन पर चलता है जो उसके धोखों में आकर सारी जिंदगी कुरान से दूर रहते हैं, डरते हैं, बंद कुरान की बड़ी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं और खुले कुरान से खौफ करते हैं। अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। आगे आयत 105 से 105 कुरान पाक पर इतराजात के जवाब में तदरीज और नासिख की बात है। तो आप देखिए तदरीज और तनसीख, पहले पारे में भी हमने ऐसी कुछ आयतें पढ़ी थी, कुछ अहकाम मनसूख कर दिए जाते थे, उस पर शोशे लोग उठाते थे ये क्या हुआ, ये ऐसे क्यों नहीं था। तो अल्लाह ताला कहते हैं वही जबदल न आया तो मकान आया, जब हम किसी आयत की जगह दूसरी आयत बदल देते हैं और जो कुछ अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है इसे खूब वो खूब जानता है, तो कहते हैं ये कि तू तो बड़ा बुख्तानबाज है। नाउज़ुबिल्ला, नबी सल्लम को कहते थे ऐसी बातें। बात यह कि इनमें से अक्सर जानते ही नहीं, लाइल्म लोग थे। कह दीजिए कि इसे आपके रब की तरफ से जिब्राइल हक के साथ लेकर आए हैं ताकि ईमान वालों को अल्लाह ताला इस्तकामत अता फरमाए और मुसलमानों की रहनुमाई और बशारत हो जाए। हमें बखूबी इल्म है कि ये काफिर कहते हैं कि इसे तो एक आदमी सिखाता है, इसकी जुबान जिसकी तरफ ये निस्बत कर रहे हैं आजमी है और ये कुरान तो साफ अरबी जुबान में है। देखिए वापस खुदम व बुशरा लिल मुस्लिमीन आयत 102, तो कुरान मुसलमानों के लिए रहनुमाई और बशारत है। एतराजात में एक एतराज ये था कि अनपढ़ शख्स जिसने कहीं कहीं कुछ पढ़ा नहीं वो इतना बड़ा कलाम कैसे ले आया। तो अल्लाह ताला उन्हीं को यहाँ सिखा रहे हैं कि देखो तुम किसी अजमी गुलाम की तरफ मोहम्मद अरबी की नस्बत देते हो, हालांकि इनके तो सीने पे अल्लाह ताला खुद इस कुरान को नाजिल करते हैं। इसीलिए फरमाया आयत 104, जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते इन्हें अल्लाह की तरफ से भी रहनुमाई नहीं होती। नोट कर लें, ईमान नहीं है तो रहनुमाई नहीं है, पूरा कुरान भी सुन जाएंगे गाइडेंस नहीं मिलेगी। और इनके लिए अलमनाक अज़ाब है। झूठ इफ्तरा तो वही बांधते हैं जिन्हें अल्लाह ताला की आयतों पर ईमान नहीं होता, यही लोग झूठे हैं। इन्नल्लज़ीन ला यूमिनून बिआयातिल्लाहि ला यहदीहिमुल्लाह, इनकार करने वाले, दुआ कीजिए मैं इसमें ना हूं। देख लीजिए हिदायत की आयत है, अब तो तड़पे, अब तो हम पारे के कुरान के निसफ पे पहुंच गए। अल्लाह हमें कभी हिदायत के करीब पहुंचाकर दूर ना करे। फ्लो चार्ट की रोशनी में देखिए कि जो लोग अल्लाह की आयत पर यकीन नहीं रखते हिदायत नहीं पाते, हिदायत को ठुकराने वालों को हिदायत नहीं मिलती, जो अल्लाह की आयत को वाज़े हक नहीं समझते उनको हिदायत नहीं मिलती। जब आपको चाह नहीं तो अल्लाह को भी राह नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला आपको फरमाते हैं कि फिर तुम अपनी मर्जी करना चाहो तो जो मर्जी करो। फिर आयत 105 में अलकल्बुल काजिब, झूठे दिल की बातें हैं। कौन सा होता है वो दिल? झूठा है। इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल्लज़ीन ला युमिनून बिआयातिल्लाहि वलाइका हुमुल काज़िबून, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता जिसे इसे झूठ का सहारा लेना पड़ता है, वो हक की रहनुमाई नहीं पाता। अल्लाह ताला ऐसे दिलों में किसी को भी ना शामिल करे। बड़ी खूबसूरत आयत है आगे आयत 106 से 111। एक तो इसमें मुर्तद की मजम्मत है और दूसरी बात इसमें है मजबूरियों में किया हुआ ऐसा इकरार जो दिल से मैच ना हो, उस सूरत में क्या हुक्म है। मन कफर बिल्लाहि मिन बाद ईमानिही इल्ला मन उकरह, जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफर करे सिवाय इसके कि जिस पर जबर किया जाए और इसका दिल ईमान पर बरकरार हो, मगर जो लोग खुले दिल से कुफर करें तो इन पर अल्लाह का गजब है और इन्हीं के लिए बहुत बड़ा अजाब है। ये है जी अलकल्बुल मखदूब अलै आयत 106। कि जिसको अल्लाह हिदायत से खाली कर दे, और अल्लाह ना करे हमारे दिल ऐसे हों जो लोग ईमान लाने के बाद कुफर कर दें और ईमान का इल्म हासिल करके फिर जाएं। अल्लाह ऐसे लोगों को दिल से इनको हिदायत से दूर कर देता है, ये इसलिए कि उन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखरत से ज्यादा महबूब रखा। यकीनन अल्लाह ताला काफिर लोगों को राह रास्त नहीं दिखाता, ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर और जिनके कानों पर और जिनकी आंखों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, और यही लोग गाफिल हैं। अल कल्बुल मतबू अलई, मोहर लगे हुए दिल। क्या पता चला आयत 108 से कि बगावत संगीन जुर्म है, इनके लिए अजीम अजाब है, अल्लाह इनको हिदायत से नहीं नवाजता, इनके दिलों पर मोहर लगा देता है। और जो लोग तबाहशुदा होते हैं ना, जिनके दिल, उनकी अलामात क्या हैं? हक को हक नहीं जानते, दुनिया की जिंदगी को आखिरत पे तरजीह देते हैं, गुनाहों पर इसरार करते हैं और अपनी आखिरत के अंजाम से बिल्कुल गफलत में होते हैं। और आज आपको ऐसे लोगों की कसरत दिखेगी। अल्लाह आंखें खोल दे। कुछ शक नहीं कि यही लोग आखिरत में सख्त नुकसान उठाने वाले हैं। जिन लोगों ने फितनों में डाले जाने के बाद हिजरत की, फिर जिहाद की और सब्र का सबूत दिया, बेशक तेरा परवरदिगार इन बातों के बाद इन्हें बख्शने वाला और मेहरबानियां करने वाला है। जिस दिन हर शख्स अपनी जात के लिए लड़ता झगड़ता हुआ आएगा, इमेजिन कीजिए इस आयत को, मेरे जिम में पुतलियां आ जाती हैं, कठपुतलियां दौड़ती भागती, ऐसे ही वहां सारे ही अपने बारे में लड़ते झगड़ते, हाय मैंने नहीं किया, मुझे बचा लो, प्लीज माफ कर दो, ये कर दो, मेरी मदद, मेरी पर्ची, मेरी मर्जी, मुझे दे दो। अपनी जात के लिए लड़ता झगड़ता आएगा और हर शख्स को इसके अपने किए हुए अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और लोगों पर बिल्कुल जुल्म न किया जाएगा। क्या बनेगा उस दिन? ये वो वक्त होगा। कैसे? पीछे सहाबा की तारीफ की गई जिन्होंने जुल्म और सितम सहे, जुल्म को बर्दाश्त किया, हिजरतें की। अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। इसके मिस्ताक हर मौके पे लब्बैक कहा और अपने आप को लेकर खड़े हो गए। आप देखिए कैसे लोग जिनको अल्लाह रास्तीन के नाम पे थोड़ी सी आजमाइश में डाल दे, खुश होना चाहिए उनको। ये सहाबा का रास्ता है, क्योंकि हिजरत के बाद मुश्किलात का दौर खत्म हो जाता है। लिख के रख ले अपने लिए। आज छोड़िए उन चीजों को जिसके अंदर आप उलझे में, इसके बाद ही आपकी सारी मुश्किलात दूर होनी है। फिर अल्लाह के रास्ते में जंग का हुक्म आए तो वो जान हथेली पे देकर निकलते हैं, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अब इश्क के इम्तिहान और भी हैं। फिर जंग के मराहिल में हो तो साबित कदमी है, जुरत और बहादुरी है, ऐसे लोगों पर अल्लाह की रहमतें हैं। और इसके बरक्स रोजे क़यामत हर एक को अपनी पड़ी होगी। अल्लाह ताला आपको मुझे दुनिया में अपनी डाल दे। अपनी फिक्र कीजिए, लोगों को छोड़ दीजिए। आज आप दूसरों की खातिर क्यों गुनाह करते हैं? कल आपको अपने अमाल की खुद जवाबदेही करनी होगी, तो लोगों को खुश करने के लिए अपने रब को नाराज ना कीजिए। आगे आयत नंबर 112 से लेकर 119, जब अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की जाए तो क्या होता, आइए देखते हैं। वदरब अल्लाह मसलन करियतन कानत आमिनतन मुतमईना, अल्लाह ताला उसे एक बस्ती की मिसाल बयान करता है जो पूरे अमन और इत्मीनान से थी, इसकी रोजी इसके पास व फरागत हर जगह से चली आ रही थी। फिर इसने अल्लाह ताला की नेमतों का कुफर किया तो अल्लाह ताला ने इसे भूख और डर का मजा चखाया। जो बदला था इनके करतूतों का, इनके पास इन्हीं में से रसूल पहुंचे, फिर भी उन्होंने इसे झुटलाया, बस इन्हें अजाब ने आदबोचार, वो थे ही जालिम। ना शुक्री के असरात, बेचैनी, इस्तराब, आजमाइश, फितने और नेमतों का उठ जाना। कहानी तो मक्का की है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने इतनी दूर से उनके पास भेजा, इतने सालों के बाद वो अल्लाह के नबी की वजह से मक्का की बस्ती आबाद हुई, लेकिन इतना जुल्म किया और आपको हिजरत करके मदीना जाने पे मजबूर किया। अल्लाह ने मक्का में आपके जाने के बाद अजाब नाजिल कर दिया था। ये लम्हा फिक्रिया होता है हर एक उस इंसान के लिए जिसको हिदायत का मौका मिले और वो उससे फायदा न उठाए तो कहीं अजाब न आए। और कहने वालों ने कहा कि ये पाकिस्तान का जिक्र है कुरान में, कैसे अमन का गहवारा था, रिस्क की फरावानी थी, लेकिन जब हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को ठुकरा कर न शुक्रियों न कदरियों में अपने इस्लाम को ही न नाफिज कर सके आज इतने सालों के बाद भी, तो भूख और खौफ का अजाब है। कैसे अल्लाह नेमतों की नाकदरी से चीजों को खत्म करता है। महंगाई के सैलाब देख लीजिए, भूख देख लीजिए, लोड शेडिंग देख लीजिए। ये वक्त है जिस वक्त इज्तमाही और इंफरादी तौबा की जरूरत होती है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आगे कुछ हलाल और हराम रिस्क के हवाले से हिदायत है, सूरत की भी तकमील है और पारा भी पूरा होने लगा है। फरमाए, जो कुछ हलाल और पाकीज़ा रोजी हमने तुमको दे रखी है इसे खाओ और अल्लाह की नेमत का शुक्र करो अगर तुम इसकी इबादत करते हो। तुम पर सिर्फ मर्दार और खून का और सुअर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा जाए हराम है। फिर अगर कोई बेबस कर दिया जाए, ना वो ख्वाहिशमंद हो और ना हद से गुजर जाने वाला हो, तो यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। किसी चीज को अपनी जुबान से झूठ मूठ ना कह दिया करो कि ये हलाल है और ये हराम है, यानी झूठ के हलाल और हराम के झूठे सच्चे फतवे मत दिया करो। कि अल्लाह पर झूठ बोहतान बांध लो और समझ लो कि अल्लाह ताला पर बोहतानबाजी करने वाले कामयाबी से महरूम रहते हैं, इन्हें बहुत सा मामूली फायदा मिलता है और इनके लिए ही दर्दनाक अजाब है, अल्लाह ताला बचा दे। और यहूद पर जो कुछ हमने हराम किया था इसमें से हम बहुत कुछ आपको पहले से सुना चुके हैं। हमने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। फिर जो कोई जहालत से बुरे अमाल करे फिर तौबा कर ले तो फिर आपका रब भी बेशक या बिलाशुबा बड़ी बख्शिश वाला और बड़ी मेहरबानी वाला है। आपके और मेरे लिए आयत है, आज तक के पिछले सारे गुनाह अल्लाह माफ करने के लिए आपको एक थेलबूत दे रहा है, एक ऑफर दे रहा है। क्या? अगली जिंदगी में अच्छे कामों की नियत कर लो। अल्लाह यहां बैठे बैठे आपके मेरे गुनाह माफ करने पे कादिर है। आगे पारे के आखिर में एक शख्सियत, एक ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी, शायद ही कोई पारा ऐसा गुजरा हो कि जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा ना आया हो। वजह यह है कि इब्राहिम अपनी जात में एक उम्मत थे। लिखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खूबियां, आयत 120 से 124। इन इब्राहिम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा, बेशक इब्राहिम पेशवार अल्लाह के फरमाबरदार और यक तरफा मुखलिस थे, वो मुशरिकों में से न थे, अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे। अल्लाह ने इन्हें अपना बरगजीदा कर लिया था और इन्हें राह रास्त सुझा दी थी। हमने उनको दुनिया में भी बेहतरी दी और बेशक आखरत में भी वो नेकुकारों में हैं। फिर हमने आपकी जानिब वही भेजी कि आप मिल्लत इब्राहिम हनीफ की पैरवी करें जो मुशरिकों में से न थे। हफ्ते के दिन की अजमत तो सिर्फ इन लोगों के जिम्मे ही जरूरी कर दी गई जिन्होंने इसमें इख्तलाफ किया था। बात यह कि आपका परवरदिगार खुद ही इनमें इनके इख्तलाफ का फैसला क्यामत के दिन करेगा। क्या पता चला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजमत? वो अपनी जात में अल्लाह की एक फरमाबरदार उम्मत का दर्जा रखते थे। वो काम जो एक पूरी उम्मत ना कर सके एक अकेले इब्राहिम कर गए। अल्लाह का हर हुक्म मानने वाले, उसकी हर नेमत का शुक्र अदा करने वाले, किसी एतबार से किसी मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत के बराबर ना करने वाले, हर तरह के शिर्क से महफूज रहने वाले। फिर देखिए आप भी ऐसे बनिए तो दुनिया की इज्जत और आखरत में अजीम मुकाम। कि अल्लाह के नबी को हुक्म दिया कि आप इब्राहिम के उसवे की पैरवी करें, हमें हुक्म दिया कि नबी सल्लम के उसवे की पैरवी करें, और अल्लाह के नबी को हुक्म दिया कि इब्राहिम के उसवे की पैरवी करें, इससे बड़ा बैज ऑफ ऑनर क्या होगा। और काम एक ही था कि इस قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين, अल्लाह के हर हुक्म पे तस्लीम खम किया। और आयत 124 में आपको पता चला कि अल्लाह के नजदीक अफजल दिन जुमे का है सब्त का नहीं, जो कि लोगों ने लिया लेकिन उसकी पाबंदी ना निभा सके। अब आगे अहम तरीन आयतों में से एक आयत, अगर मैं चाहती तो इसको भी रख लेती लेकिन हयातन तैयबा में खुद ब खुद ये आयत आ गई। और क्या है? दावत दीन की तीन सतहें, तरीका दावत तबलीग सिखाया जा रहा है। आपने मैंने जब नियत जो कर ली कि दूसरों को भी अल्लाह का बनाना है, अल्लाह की पसंद का बनाना है, तो बाद दफा होता है कि आप कहते हैं हम तो कहते हैं लोग मानते नहीं, तो आपको मुझे हिकमत तबलीग सिखाई जा रही है। वो दुला सबीली रबी कबिल हिकमत वल मोइजत हसना, अपने रब की राह की तरफ लोगों को हिकमत और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाइए और इनसे बेहतरीन तरीके से गुफ्तगू कीजिए। यकीनन आपका रब अपनी राह से बहकने वालों को भी बखूबी जानता है और वो राह याफ्ता लोगों से भी पूरा वाकिफ है। क्या पता चला कि दावत दीन की तीन सतहें होती हैं? अब देखिए कि माशरे के जहीन और सोचने समझने वाले लोगों को हिकमत यानी दलाइल के साथ अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, उससे जरा सा नीचे आइए तो अवामुन नास आ जाते हैं, उनको दर्द भरे वाज और नसीहत के साथ दिल में उतरने वाले अंदाज से अहकाम इलाही बजा लाने की तरफ मुतवज्जो कीजिए, और फिर एक आखिरी गिरोह रह जाता जो फितने उठाने वाला, जो वाकई क्रिमिनल्स होते हैं तो फिर उनको उम्दगी और शायस्तगी के साथ बहस के अंदाज में लेकिन झगड़े के अंदाज में नहीं बल्कि अच्छे तरीके से तबलीग की जाए, ताकि सादा लोह लोग इन फितनों के असरात से महफूज रह सकें। अगर आप कुरान पाक को जरिया तबलीग बना लें तो इन तीनों सतहों पर दावत के लिए आपको बेशुमार मवाद मिलता है, जो आप खुद भी गवाह हैं इसके। अल्लाह ताला आपको मुझे इसी की तौफीक दे। आखिरी आयतें हैं सूरत की भी और पारे की भी, 126 से 128, सबर और तकवा की अहमियत, और सबर और तकवा के साथ ही नुसरत मिलती है। वही नाकब तुम फाकिबू बिमिसली मा उकिब तुम बिह, और अगर बदला लो तो भी बिल्कुल इतना ही जितना सदमा तुम्हें पहुंचाया गया हो, और अगर सब्र कर लो तो बेशक साबिरों के लिए यही बेहतर है। आप सब्र करें बगैर तौफीक इलाही के आप सब्र कर ही नहीं सकते, और इनके हाल पर रंजीदा ना हो, और जो मकरो फरेब ये करते हैं इससे दिल तंग ना हो। यकीन मानो कि अल्लाह ताला परहेजगारों और नेक कार लोगों के साथ है। क्या पता चला कि ज्यादतियां छोड़ दो, जिंदगी को पाक करो, हम तो अपने सुकून के रिश्तों से झगड़े करें और ज्यादतियां लें बदले लें कहां दूसरों को। तो बात यह है कि आपकी मेरी अगर यही जिंदगी होती तो यही काफी था। जरूरत इस बात की कि हम अपने बारे में फिक्र करते हुए इस बात की ख्वाहिश रखें कि मेरे मालिक तू मुझे इसकी तौफीक दे कि मैं तेरी मर्जी के साथ इस दुनिया में चलूं। तो ये था हमारा आज का खूबसूरत पारा, जिसने हकीकत में आपको मुझे इस बात का खूब अच्छी तरह से यकीन दिला दिया कि जब तक हम अल्लाह के हुक्मों पे नहीं चलेंगे, उसकी मर्जी पे नहीं चलेंगे, उसको अपना हर तरह से बड़ा नहीं समझेंगे, हमारी जिंदगी में खुशी नहीं आएगी। क्योंकि जब तक आप और मैं इस दुनिया की जिंदगी को मुख्तसर से मुख्तसर तर फिर मुख्तसर तरीन नहीं करते जाएंगे और आखरत के मामले में संजीदा से संजीदा तर नहीं होते जाएंगे, हमारी बात नहीं बनेगी। यही पैगाम अल्लाह ने आपको मुझे दिया था। अल्लाह सुभान तआला ने जो बात आपके मेरे लिए रखी वो यही है कि जिंदगी को मुख्तसर समझो, अल्लाह तुम्हें जो देना चाहता है उसको लेने के लिए दोनों हाथों से अपने आप को खोल दो और देखो तो सही कि तुम्हारा रब तुम्हें क्या देता है। और मैं तो इस पारे को पूरा पढ़ने के बाद जो अपने दिल के अंदर एक फीलिंग लेती हूँ, जिसको एक मैं जज्बा लाती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि ये मैं हूँ, ये मेरी दिल की तड़प है। और वो क्या है कि जिंदगी पाकीजा कब होगी, जब हकीकत में ये कुरान हमारे हाथों में होगा, और इस कुरान को अपना उड़ना बिछोना बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को खाली करना पड़ेगा। जितना ज्यादा अल्लामा इकबाल ने यूथ को पुकारा, यंग को पुकारा, वो क्या कहते हैं आज का शेर, आज भी हो जो इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। अल्लाह ताला हमें ईमान में बढ़ा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।